साथ हो रही है हरी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय हरे कृष्ण। तो कल हम लोग इसी कथा क्रम के अनुसार प्रह्लाद महाराज जी का आविर्भाव हो चुका है। जब देवताओं ने तंग होकर के भगवान की शरणापन्न हुए, उनको प्रार्थना किए, तो भगवान का उनका आशीर्वचन था कि मैं अवगत हूँ आपके दुख से, हिरण्यकश्यप का कार्यकलाप से, और मैं प्रकट हूँगा, आप लोग को मेरा दर्शन होगा और आपका दुख निराकरण हो जाएगा। कब? ना जब उनका एक बेटा होगा, वो मेरा भक्त होगा, उसका ऊपर अत्याचार करेगा, उसको मैं सहन नहीं कर सकता। ये वचन से भगवान का विशेष स्वभाव का परिचय मिलता है कि भगवान के जितने गुण है, सारे गुण में सर्वश्रेष्ठ गुण है भक्त वात्सल्यता। समुच्चे देवता परेशान होकर के वायु पी करके नींद हराम हो गया था, बेचारे इतने व्याकुल होकर प्रार्थना किए, भगवान उनके लिए कोई फिक्र नहीं किए, बोले ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन उनके सामने ही कहे, बोले मैं अभी आपको मिल नहीं सकता, लेकिन मेरा कोई भक्त होगा, उन्हीं के बेटा होगा, भले मेरा भक्त होगा, उनको तंग करेगा, आई कांट टॉलरेट। वो सही है, उसके लिए जरूरत पड़े तो मुझे प्रार्थना क्या करेगा, वो खंभे फाड़ कर निकलूंगा। ये भगवान की विशेष गुण है भक्त वात्सल्यता, भक्त वचन। भक्त के दुख को सहन नहीं कर सकते ना। तो इस प्रकार के देवताओं को आश्वासन वाणी देकर के भगवान अंतर्हित हुए। वो तो दर्शन तो हुआ नहीं था उनका, तो देवताओं ने अपेक्षा किए, तो उसमें वर्णन प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि उनके इति अवसर में चार पुत्र हुए थे हिरण्यकश्यप में, हिरण्यकश्यप के, जिनमें श्री प्रह्लाद जी हर प्रकार में, रूप में, गुण में, आचरण में अति श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ माने इतने सुंदर उनका स्वभाव था, बोली रूप इस प्रकार था कि केवल राजा तो, जो असुर लोग होते हैं ना, वो ज्यादा हमें फैमिली प्रति भी ज्यादा अटैच होते हैं, घर पर घर माना, ये भी एक असुर के लक्षण है। कंस का वो जो भाई थे, इतने अपने संबंधियों के प्रति काम करता था, वो जो मरा उनके साथ उनके 8 भाई भी ऑल आउट हुए थे, उनके साथ एक ही साथ में चिता जला था सबका, ऐसा नहीं कि बाद उसी दिन जाए, मरते दम तक उनका छोड़ देने, क्योंकि इतने उनको अटैचमेंट था। तो अब केवल हिरण्यकश्यप नहीं, उनके राज परिवार के और उसी इलाके के जो भी लोग थे छोटे बड़े, प्रहलाद को देख करके उनके स्वभाव से इतने सुंदर व्यवहार करता था सबके साथ, सभी उनके प्रति बहुत प्रेम रखते थे। तो युधिष्ठिर महाराज कैसा लड़का था, तो देवर्षि नारद उनके गुण वर्णन करने जा रहे हैं कि यद्यपि असुर कुल में था लेकिन असुरों का कोई एक भी गुण उसका अंदर नहीं था। था असुर कुलोद्भव, हिरण्यकशिपु का बेटा था और उनके तीन और भी थे लेकिन ये बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था। इस चीज से एक शिक्षा, एक प्रमाण हमको मिल सकता है कि भक्त होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि माँ बाप भक्त होना पड़ेगा ना। ये सरासर तो हेरिटेटेड भक्त थे, ब्रांडेड नन्नी बटी थे, विष्णु के बिल्कुल पक्के दुश्मन थे। वो केवल अकेला नहीं था, पूरे पार्टी था सपोर्टर। अब उन्हीं के बेटा बताओ, तो इसलिए कुछ जरूरी नहीं है कि इसे होना चाहिए ना। भगवत भक्त भगवत भक्ति का कोई स्थान काल पात्र कोई कहीं भी प्रकट हो सकता है, सर्वत्र सर्वकाल सर्वदेश में सब परिस्थिति में भक्ति किया जा सकता है। तो प्रहलाद का ऐसे हिरण्यकशिपु के परिवार में उनके बेटा के रूप में इतने उच्च कोटि के भक्त कैसे हुआ, एक तो मानना पड़ेगा कि हो सकता है लेकिन कैसे हुआ उसके पीछे कई कारण क्या हो सकता है। तो इसका एक कारण तो है कि हम कहेंगे कि नारद जी ने उनको गर्भ में शिक्षा देने, नारद जी ने गर्भ में शिक्षा देने से पहले ही से ही भक्त था। नारद जी ब्रॉडकास्ट किए, जब इंद्र ने बांध के ले रहा था कयाद को तो नारद जी मिले उनको, बोले इंद्र तू बदमाश से पता नहीं जूनियर हिरण्यकशिपु निकलेगा, एक तो इतने हमारा बुरी हाल करके रखा है, ये दूसरा होने से पहले। अब देखिए इंद्र ने भी वो मार सकता है कयाद को, मिसेस हिरण्यकशिपु मैडम को मार सकता था लेकिन नहीं, उन्होंने भ्रूण हत्या गर्भ आवर्षण नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं वेट करूंगा लेकर रखूंगा, जब उसका बालक जन्म होगा तभी उसको मारूंगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु का बेटा तो जिन्हें हिरण्यकशिपु होगा ही, उनका भी अनुमान था देवराज का भी। लेकिन नारद जी ने बोले नहीं तेरा गलत अनुमान, बोले कैसे उन्हीं के बेटा है, उन्हीं की पत्नी है, उन्हीं के बेटा होगा, उन्हीं की पत्नी के उन्हीं के गर्भ से, बोले वो सब कुछ है लेकिन चीज अलग निकले, प्रोडक्ट अलग होगा, मैटेरियल सब सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग निकलेगा। अब वो रहस्य नहीं बताए उनको, क्योंकि अगर नारद जी की शिक्षा तभी शुरू नहीं हुआ था, नारद जी ने तभी इंद्र को बोले ये एक बहुत बड़ा भक्त होगा तू उसको मार ही नहीं सकता, तेरी ताकत नहीं उसको मार देगा तुम्हें, असंभव है क्योंकि विष्णु भक्त है। तो नारद जी ने तभी के इंद्र तभी डर करके प्रणाम करके उनको छोड़ दिया। तो मतलब नारद जी की शिक्षा के वजह से भक्ति किए ये नहीं है, नैसर्गिक भक्ति, नैसर्गिक मतलब स्वभाव भक्त है, भक्त ही जन्म हुए थे पहले से बनी बनाई, बनी बनाई कैसे भक्ति का आचार्य लोग भक्ति के बारे में खूब रिसर्च किए कि उसका कुछ कारण हो सकता है, कहा गया कि नहीं भक्ति एक ही है जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब किसी का अधीन नहीं है, अगर किसी का इसी के वजह से होता है तब उसका होगा तभी होगा, मतलब भक्ति स्वाधीन है, परम स्वाधीन, कोई नहीं कह सकता ये हुआ इसलिए भक्ति का, पुण्य किया दान किया तप किया वो किया तभी हुआ, बोले ना भक्ति संपूर्ण स्वाधीन है, कोई चीज उसको इसके वजह से भक्ति बनना, बोले भक्ति किसी भरे होता है ना, भक्ति का कारण केवल भक्ति ही है, भक्ति के कारण भक्ति ही है। आप बोलेंगे भाई भक्तों का सेवा करेगा भक्त संग, तब ना भक्ति की सेवा, भक्त की सेवा करना ही भक्ति है, भक्त संग करना ही भक्ति है। तो इसीलिए कहा गया कि भक्ति के कारण केवल भक्ति ही हो सकता है और कोई भक्ति के कारण हो नहीं सकता। तो इस रहस्य को रहस्य में रहने दे, कभी जरूरत पड़े बताएंगे। तो जो भी हो, तो नारद जी भी रहस्य में रखे, पज रखे उसको, उन्होंने उसको बताया नहीं। तो उन्होंने गुण वर्णन करना शुरू किए कि यद्यपि असुर कुल में जन्म हुआ था लेकिन कोई असुर के लक्षण उसे दिखाई नहीं पड़ता था। असुर को काले कलुटे बड़े चिकने हट्टे कट्टे गठीले होते हैं, बोले ऐसा नहीं था, बड़े सुंदर सरल चेहरा था, मुलायम हाथ कमल मुखड़ा सब देखने में बड़े सुंदर रूप था उनका। अब कोई परिवार में सारे काले काले हो, एक गोरे आ जाए, सब उसको पसंद करेंगे ना। तो असुर कुल बोले ये तो इतने बढ़िया कैसे आप, तो अच्छा था जन्म से। और जन्म से ही उनका गुण वर्णन करते हैं एक एक श्लोक में करके, समय अभाव में ज्यादा नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मण्य शिर संपन्न सत्य सिंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तम, इसे कई श्लोक में वर्णन किए हैं। सबसे पहले उनके गुण वर्णन में जब गिनती किए क्या क्या उनका गुण था बालक का, तो सबसे पहले गुण था ब्रह्मण्य। ब्राह्मण्य का अर्थ है एक क्वालिटी के ब्राह्मण का जो गुण होना चाहिए सारे उसमें था, ओरिजिनल ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का गुण आप जानते होंगे, नौ गुण होता है, समो तमो तपो सोच खंती आजर्म एवच। तो ये सारे गुण था उसके अंदर, सारे गुण था। और ब्राह्मण्य शीर संपन्न, शीर शब्द का अर्थ तब समझ रहे होंगे, राम शील स्वभाव, भगवान राम का स्वभाव कैसा था, शील था। और शील का शील नहीं समझ में आता है शायद आपको, शील मतलब ये नहीं बांटने वाला शील होता आता ना, ये नहीं, शील हम है नहीं इसलिए शील समझ, हम अश्लील है, ये अश्लील बोलने समझ जाएंगे। अश्लील मतलब असभ्य बर्बर बदमाश, उसको अश्लील कहते हैं। तो ऐसे नहीं थे, बिल्कुल शांत भद्र थे, शील थे, शीलता, इतने भद्र थे, इतने जेंटल थे, शील संपन्न, सत्य संधो, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय इंद्रिय को अपने बस में करके रखे थे, आत्मवत् सर्वभूतानां, सभी को आपने जैसा मानते थे, कभी किसी स्थान में कहीं भी आप जाओ, आप स्वयं आपके लिए जैसा व्यवहार आशा करते हैं कि मुझे ऐसा सब देख करके प्रणाम करे, सम्मान करे, मुझे देखे, जैसे हम सभी अपने लिए आशा करते हैं, ठीक सभी के लिए भी ऐसा ही हो जाते थे। इसलिए आत्मवत् सर्वभूतेषु, और एक प्रिय सुहृत्तम, बोले एक प्रिय को आचार्य लोग ऐसे अर्थ करते हैं कि बोलते हैं कि जितने सारे प्राणी है समुच्चय संसार में, सभी भले ऊपर ऊपर से कोई किसी को प्यार करे प्रेम करे, लेकिन असली में कोई किसी को नहीं करते, सब आपने को ही करते हैं। अभी अभी इतने लोग बैठे हैं, हठात कोई फायर इंसिडेंट हो तो सबसे पहले आप दूसरे को, जो किसी को हटाएंगे ना, पहले भागेंगे आप, पहले आप कूद के बाहर चले जाएंगे, फिर सोचेंगे उनको बुला ले लेता। सबसे पहले आपने आप को बचाएंगे, सबसे पहले आपने आप को क्यों बचाते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सबसे प्रिय है। आत्मा क्यों प्रिय है ना, क्योंकि परमात्मा है वो सबसे प्रिय है। तो इसी प्रकार जैसे सभी को अपने आत्मा प्रिय है, ऐसे ही प्रहलाद महाराज पूरे समुदाय में सबसे प्रिय थे, सभी उनको बहुत लाइक करते थे, सुहृत्तम, और सभी के लिए इतने हितकारी थे, कभी किसी का बुराई नहीं करते थे। सुहृत शब्द का अर्थ कि बंधु नहीं है, हृदय से अच्छा चाहने, सु मतलब भलाई, हृदय से भलाई चाहने वाला, इसे केवल मुंह से बोली और बगल में छुरी इसे कहा होता है ना, ऐसा नहीं, सुहृत हृदय से ही अच्छा चाहते हैं सुहृद तमते। और दांतवत इतने संयमित है, उनका जो व्यवहार को वर्णन करते हैं कि जो गुरुजन लोग होते हैं बड़े लोग, उनको देखते ही तुरंत चरण स्पर्श करते थे, नतमस्तक होकर चरण छूते थे। पितृवत दीनवत्सल, जो दीन लोग थे उनको पिता के सदृश उनको स्नेह देते थे, जो छोटे थे, जो उनसे आयु में, समझ में, धन में हर प्रकार से उनके अलग ग्रेड के थे, तो उनको वात्सल्य देते थे पिता जैसा पुत्र को समान, और बड़ों को नतमस्तक होकर के अपने पिता जैसा उनको सम्मान प्रणाम करते थे। भातृव शत्रु से जो समान है उनको भाई के जैसा व्यवहार करते थे, जैसे अपने सगे भाई जैसा समान। ये तीन व्यवहार उनका था, अपने से बड़ों को पिता के सदृश बिल्कुल नतमस्तक होकर अंग्री चरण स्पर्श करते थे, अपने से छोटे को जैसे उनके पिताजी है इतने स्नेह ममता देते थे, और जो समासकंद है उनको अपने सगे भाई की तरह मानते थे। स्निग्धो गुरु ईश्वर भगवान, और जो उनके गुरुजी थे उनको साक्षात हरि जैसा मानते थे। अभी गुरुजी कौन थे? नारद जी। साक्षात हरि जैसा उनको मानते थे। तो इस प्रकार सारे सद्गुण संपन्न थे उन्होंने जन्म से ही। उसके बाद बोलते हैं कि न उद्विग्न चितो व्यसनेषु निस्पृहा, कभी उनका चित्त विचलित नहीं होता था, कहीं किसी भी परिस्थिति में टेंशन नहीं लेते थे, उद्विग्न चित्त नहीं होते थे। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुद्रुक, तो इस प्रकार किसी प्रकार से सुनकर किसी प्रकार कोई उनको ना किसी को विचलित करते थे ना किसी के द्वारा उन्होंने प्रभावित होते थे। इस प्रकार से अनेक सद्गुण से मंडित थे। जस्मिन सद्गुणा राजन गृहन्ते कवि, ऐसे ऐसे सद्गुण था राजन युधिष्ठिर महाराज को नारद जी, राजन उनका सद्गुण को मैं क्या कहूं, अभी तक जितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, कवि मतलब पंडित लोग जो रचना करते हैं, वो सारे इसी गुण को गाते हैं, बहुत गाते हैं। ये प्रहलाद महाराज के इसी गुण था, इतने गुणवान थे, मुहुर बारंबार उसी के कहते हैं, गुण की चर्चा करते हैं। बोलते हैं कि राजा दुष्ट्री किसी भी सभा में जहां संत तथा भक्तों की चर्चा चलती, वहां पर असुरों के शत्रु देवतागण तक प्रहलाद महाराज के परम भक्त के रूप में उदाहृत करते हैं। बोले जो देवता उनके चीर शत्रु है, किसके? असुरों के। बोले वो शत्रु लोग भी अपने गोष्ठी में भी अगर कोई सद्गुणी सदाचारी का उदाहरण प्रस्तुत करे तो किसका देते थे? प्रहलाद। बोले वो भी, बोले अपने संबंधी तो ताली मारेंगे बजाएंगे ही, बोले जो अपोजिट पार्टी वाले वो थोड़ी कहेंगे, तो गलिए नहीं, बोले अपोजिट पार्टी के सारे सदस्य, कोई और उदाहरण नहीं मिलता, उन्हीं को उदाहरण देते, भूरी भूरी उन्हीं का नाम देते। बोले ये अद्भुत है, बाकी जाने में कहीं देखे पड़ते, ये भी करते थे। तो इस प्रकार नस्त क्रीडन को बाल, बोले जब बालक अवस्था उनका हुआ, कुमार अवस्था 4-5 साल की उम्र हुई, मतलब 3-4 साल 5 अपने फ्रेंड से तुम चलते बुलते फिरने लगे, तुतली बोली बोलने लगे, ये सब करने लगे, KG 1 KG 2 पढ़ने का जब एज हो गया उनका, तब ये सब था नहीं इंग्लिश मीडियम, तब तो इस स्टेज में जब आ गए तब बालावस्था क्रीड़ा सकता, साधारण बच्चे खेलकूद में रमते हैं, है ना, यही साधारण तो दिखा लेता है। लेकिन वो बालक अवस्था में नस्त क्रीड़न को बालो, बालक होते हुए भी खेल कूद में रुचि नहीं था उनका, ना ये अद्भुत था, खेल कूद नहीं चाहते थे, नहीं चाहते। बोले क्यों? ना कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा न वेद जगदी दृशम, जगत कैसा है, ये जगत, जगत का किसी प्रकार का उनको कैसे है, क्या चलता है, क्या अभी करंट समाचार है, कुछ भी उनको पता नहीं था, कभी जानना चाहते नहीं ना कोई उनको पता था किसी प्रकार की। जागत की चीज से बिल्कुल भिन्न थे, केवल जगत को छोड़कर के जगन्नाथ का चिंतन में थे, जगत की चिंता था नहीं उनका। तो इस प्रकार क्यों इससे चिंता थे, तो नारद जी एक कारण इधर बताते हैं। कारण क्या है, न कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा। कृष्ण ग्रह कहने का अर्थ है, आप लोग सब ग्रह जानते ना, ग्रह में कितना ग्रह दशा लगता है, विशेष करके शनि राहु तो बहुत परिचित होगा ना। शनि राहु है कौन, ग्रह ही तो है। अरे अभी शनि दशा चल रहा है, अभी कितना 12 साल 18 साल पता नहीं कितना, जितना साल भी हो लोहे की अंगूठी तेल डालो उनको किलावन में जाओ करे, तो ये सब ग्रह दशा जैसे पड़ता है कि बोले प्रहलाद महाराज को एक ग्रह दशा था, कौन सा ग्रह था, कृष्ण ग्रह, ये नवग्रह तो कोई ग्रह नहीं है, ये ग्रह दशा था। ये नारद जी कहते हैं, बोलते हैं कि उनको ग्रह दशा चल रहा था, क्या करें छोटे बचपन से जन्म से उनको ग्रह लग गया था, ये ग्रह था कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, उनके मन तो कृष्ण ग्रह से गृहित आत्मा था, ग्रह ग्रास कर चुका था, इसलिए वो केवल उन्हीं के चिंता के अलावा जगत चिंता पर था नहीं। इस प्रकार कह करके आगे उनके फिर कैसा वो काम धाम कैसे व्यवहार कैसे चलता था, तो उसी कुछ श्लोक में आगे वर्णन करके कहते हैं कि आसीना पर्यटन सयान पीवन ब्रुवन, ये सब बैठते उठते बोलते खाते पीते सोते, ये जो सब काम करते थे वो किस प्रकार करते थे, बोले ये सब करते करते एतानी गोविंद परिरंभितः, ये सब तो करते थे लेकिन उनको पता नहीं चलता, मैं सोता हूँ खाता हूँ पीता हूँ बोलता हूँ कुछ करता हूँ, उनको नहीं पता चलता था क्यों ये सब करते, किसी को पता नहीं, क्योंकि गोविंद परिरंभितः, परिरंभित मतलब आलिंगित, परिरंभ मतलब आलिंगित एम्ब्रेस, किसके द्वारा एम्ब्रेस्ड है, गोविंद के द्वारा आलिंगित महसूस करते थे, छोटे बच्चे तो थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते ना, 1.5-2 साल के होंगे, अपने हाथ से खा नहीं सकते हैं, छोटे बच्चे होंगे तो उनको माताजी उनके माँ उनके पिता कभी गोद में लेकर के वो खिला देते हैं, कोई बच्चे पिला देते हैं खिला देते हैं चम्मच, तो उनको बच्चा को क्या पता है, वो जानता है कि माँ तो खिलाएगा, जो खिलाएगा मरे लिए हिंदे वही खिलाएगा, वो थोड़ी चिंता करेगा वो मुझे चाहिए वो चाहिए, चिंता किसका होगा, माँ का चिंता होगा। तो ठीक प्रहलाद महाराज को किसी प्रकार के उनको बच्चों का बोलना क्या रोना था ना, जो भी तोतली बोली बोले जो करे, तो केवल और माँ बाप के गोद में रहते हुए जिस प्रकार निडर निर्भय होकर के अब वही कराते हैं उन्हीं के ऊपर भरोसा करके, ठीक इसी प्रकार लक्षण युक्त होकर के बालक प्रहलाद ने ये सभी शारीरिक क्रिया दैहिक क्रिया करते थे, किस प्रकार ना गोविंद परिंद, ये हमेशा अनुभव करते थे कि मेरे डैडी गोविंद मुझे गोद में लिए हुए हैं, लेकिन ये केवल वही महसूस कर सकते थे देख सकते थे बाकी कोई नहीं, वो हमेशा अनुभव करते थे कि भगवान ने मुझे गोद में लिए, भगवान गोद में लिए हैं, काहे को डरेगा बता, कोई छोटे बच्चा अगर माँ के गोद में रहता है डरेगा, गोद में क्या है, अगर छोटे बच्चा 3 साल का भी हो और एक हाथ उसका माँ पकड़ी है और एक हाथ उनका पिता पकड़ा हुआ है और ये छावला मार्केट में चलता होगा, सामने में कोई कुत्ता आ जाए चाहे हाथी आ जाए वो डरेगा, पैर उठाएगा उसको, बोले कुछ होगा तो दो है मेरे को सिक्योरिटी गार्ड वो संभालेंगे, मेरे क्या झगड़ा करने वाला जो भी करेंगे वो संभालेंगे, वो तो डर क्या चले। और देखो ये उनका क्या क्षमता है, दोनों माता पिता का विचार कितने तुच्छ शक्ति वाले हैं, क्या शक्ति है उनके, लेकिन अनुमान लगाओ जो भगवान को जिसका उंगली पकड़ कर चले तो कितने बिंदास रहेगा। तो इस प्रकार प्रहलाद गोविंद परिरंभित, भगवान की गोद में महसूस करते थे मैं हूं, इस प्रकार से उनका दैहिक क्रिया चलता था। और बोले इस प्रकार अनुमान करते थे, तो इसलिए कचित बदती वैकुंठ चिंता सबले चेतना, कचित हसती रोदती उद्गायती क्वचित, ये सब लक्षण दिखाई पड़ता। बोले क्यों? क्योंकि हमेशा महसूस करते थे कि मैं मेरे सबसे प्रियतम एकमात्र मेरे मेंटेनर मेरे पालक पोषक रक्षक मेरे सबसे प्रियतम प्रभु गोविंद मेरे साथ में मुझे गोद में लिए हुए हैं, यही महसूस करते, इसलिए सब लक्षण दिखाई पड़ता है। बोले क्यों? बोले छोटे बच्चे जैसे अपने माँ के गोद में रहता है, माँ गोद में रहता है, खिलाता है पिलाता है, तो कभी कभी माँ घर के काम करने के लिए उनको कहीं बैठा करके चली जाती है। अब बच्चा बड़े तुम देखा माँ नहीं पास में तो क्या करेगा, रोएगा ना जी। अब थोड़ा भले में पहले रोएगा शुरू करेगा, अब देखा माँ नहीं आ रहा है तो फिर भले बढ़ेगा बढ़ता ना, हाँ फिर और भले बढ़ेगा और चिल्लाए। कभी कभी तो सांपुल है ना शुरू हो गया उनका क्या है, उनको दही आता चित्र उदती रोएगा, क्योंकि वो जानता है गड़बड़ तो दोष देगा हमको, रोएगा बस। तो भगवान भाई विभिन्न और भी बहुत भक्त हैं, संसार के पूरे झमेला है उनका, कहीं और काम में लग जाए थोड़ा ध्यान रहे तुरंत चिल्लाएंगे, तुरंत चिल्लाना चाहिए ऐसे आवाज करके रोएंगे, भगवान के कभी दृष्टि इधर उधर हो जाए ना पड़े उनका नजर, तुरंत चिल्लाना शुरू करेंगे। कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले ऐसे रोते थे। अब किसी हंसती बोले फिर हंसता, बोले हंसता क्यों है? बोले जब रोते रोते देखा कि भगवान बोले बेटा मैं ही हूं ना, क्यों फिर हाथ लगा है क्यों रोता, पास में आ गए उठा लिए तो फिर हंसते, फिर सारे रोते हंसने शुरू, ठीक है ठीक है, फिर हंसने शुरू करे हंसने शुरू। कभी कभी चुप हो जाते थे, कभी कभी शांत से बैठते थे, और कभी कभी बिहड़ सबल चित्त से मतलब बिहड़ चित्त व्याकुल हो जाते थे। कभी कभी महसूस होता था नहीं प्रभु जी से विरह में है नहीं मेरे पास में, तो विकल होकर के जैसे बेचैन होकर के रोता है बच्चा, तो इसे बेचैन होकर के रोते थे, बिल्कुल राहुल बेचैन होकर रोते थे इस प्रकार। और कभी कभी रोते रोते अगर दूर से दिखाई पड़ेगा भगवान देखते हैं हंसते हंसते मैं हूं ना इधर, शांत हो जाते। और कभी कभी उनको ढूंढते 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 कभी कभी भगवान बोले देखो तू कहाँ चला गया था, मैं तो तुझे ढूंढ रहा हूँ इतने देर से, नाम पकड़ेंगे बेटा प्रहलाद बच्चे प्रहलाद, भगवान कभी कभी पुकारेंगे तो देखेगा, देख करके खूब जोर से चित्कार करके भगवत नाम पुकारेगा, मैं मम्मी पापा का नाम ले देता है जैसे तोतली बोली में इस प्रकार। बोले ठीक जैसे एक छोटा शिशु अपने माता पिता के ऊपर जिस प्रकार साधारण सहज व्यवहार करता है, ठीक प्रहलाद ने भगवान के प्रति इसे सहज आसक्ति ममता व्यवहार था उनका, यही सब लक्षण था। कभी हठात रोता था रोते थे, कभी हंसते थे, कभी चिल्लाते थे, कभी उनके नाम लेते थे, कभी गिर जाते थे, कभी क्या चुप बैठते थे, कभी शांत होते, कभी सारे शरीर रोमांचित हो जाता था, ये सारे लक्षण ईश्वर के साथ उनके भाव के प्रदर्शित करता है। कभी साथ में होते कभी छुप जाते, कभी क्या होता उन्हीं के भाव वही जाने वही जाने, बाकी कौन समझे, दुनिया से तो लेन देन था नहीं, वो तो उसी धुन में थे। इस प्रकार उनके लक्षण था ये बालपन से। अब इसी प्रकार के महाभागवत भक्त प्रहलाद, लेकिन ये तो सब अद्भुत विष्णु भक्ति के लक्षण था, एकांत विष्णु भक्ति। विष्णु भक्ति क्या है? विष्णु जैसे ग्रह रूप में जिसको लगा हुआ है, तो लेकिन बेचारे हिरण्यकशिपु महाराज और उनके सरकार उनके सारे पत्नी और वो कहे तो समझ पाएंगे, सब भक्ति रसामृत सिंधु तो पढ़े नहीं थे तो वो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बाहरी चेहरा और जो विनम्रता और खेलकूद में जाता नहीं, बड़े सुधार है, भद्र है, कभी झूठ नहीं बोलता, ये सब देखकर बोलते हैं कितना अच्छा लड़का, हमारे खानदान में इज्जत कोई है ही नहीं, उनका खानदान में सब बदमाश निकले थे, ये कैसे निकल आया, असत सहज प्रेम करते थे सब उसमें। और सहज प्रेम करने का और एक लक्षण था जिसे इसमें आया, बहुत विनीत थे, बहुत विनम्र थे, मतलब कोई भी छोटे बड़े, वो राजकुमार थे, राजकुमार होने के नाते पूरे सिटी में वो होनहार थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज इतने सुंदर, सबके सबके नजर उनके ऊपर है, इसे राजकुमार है, लेकिन वो अगर बाहर निकलते थे कोई चपरासी भी मिल जाता था, अंकल हरे कृष्ण तो नहीं कहते होंगे, वो बोलते होंगे जो भी है अंकल हरे कृष्ण, तो प्रणाम करते थे उनको, कह करके उनको सम्मान करते थे, वो तो कभी आशा नहीं करता, हे राजकुमार है जो महाराज सम्राट उनको सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, वो आकर पैर छू लेगा तो कितने गदगद हो जाएंगे, तो इसलिए सभी उनको बहुत चाहते थे। असुरगण भी इस प्रकार उनका भद्र व्यवहार से, तो धीरे धीरे जब बालकपन होने लगा तो हिरण्यकश्यप उनको फिर सोचे कि इसी को मैंने राजा बनाऊंगा, मेरा उत्तराधिकारी इसी को बनाऊंगा, बाकी लड़के ही नहीं, ये है। तो उनको बहुत प्रेम करते थे और उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन काम के लिए, वो तो उनके असुरकुल के गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य अभी कहीं गए थे प्रोग्राम में, तो उनके दो बेटे थे, तो उनका इंस्टीट्यूशन था संडम अमरकर, उनका स्पेशल इंस्टीट्यूट था राजकीय महाविद्यालय हिरण्यकश्यपु जी के, तो उसमें जितने राजकुल के राजा के खानदान के जितने लड़के थे सब पढ़ते थे, मंत्री और बाकी जितने रेल राज कर्मचारियों के जितने बच्चे हैं सब वहीं पढ़ते थे, तो डायरेक्टर साहब थे संडा और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर अमर थे, और उन असिस्टेंट टीचर हुए होंगे रखे होंगे किसको, वो दोनों तो मैन थे, तो उनको खबर दी, बोले उनको स्पेशल पढ़ाओ, बोले तभी जमाने में मतलब डे स्कूल तो था नहीं, बोर्डिंग स्कूल होता, गुरुकुल हुआ करता था, तो गुरुपुत्र दोनों थे ही, अब साक्षात सम्राट के पुत्र हैं उनके आदेश, तो उनको ले गए, स्पेशल एडमिशन हुआ, तो उनको सिंगल कमरा देकर रखे होंगे हॉस्टल में, पूरा व्यवस्था हिरण्यकश्यपु हमेशा खबर लेता था कैसा है, तो कुछ दिन उन्होंने रहे हॉस्टल में रह करके पढ़े, लेकिन हिरण्यकश्यपु आपने बेटा का विरह कुशल नहीं कर पाया ना, इतने प्रेम था, इतने ममता आसक्त था प्रहलाद के प्रति, उन्होंने बुलाया, बोले नहीं लेकर आओ, वीकेंड हो गया एक बार लेकर आओ, मैं इसको थोड़ा मिलना चाहता हूँ, थोड़ा देखना चाहता हूँ, तो खबर पहुँचा स्कूल में तो भेजे कर्म राज कर्मचारी गए उनको लेकर के आए, महाराज बुला रहे हैं, तो राज कर्मचारी जा करके प्रहलाद को लेकर आए, प्रहलाद आते ही आप बताए उनके गुण ही ऐसा था, इतने नम्र इतने भद्र थे, राज कर्मचारी आए उनको भी सम्मान करते थे, और जो राजभवन में प्रवेश किए जो भी संतरी मंत्री सिक्योरिटी सभी को चाचा काका मामा कह करके अपना संबोधित करके उनको सम्मान करते थे यथावत, तो सब गदगद होते थे कितने अच्छा है, सब अपने जो भी अपने दुआ देना चाहते थे उनको, तो और जब पूरा हिरण्यकश्यपु के सामने आएंगे वो तो महा आसन में बैठे थे, दूर से पिताजी को प्रणाम कर दे, हिरण्यकश्यपु देखा, देख कर बोला कितने अच्छा, मेरे बाकी लड़के इसे प्रणाम तो करते ही नहीं आजकल लड़के कोई करते हैं पापा को तो गालियां बक देंगे भले लेकिन गाली तो उनसे मुंह में नहीं आता था, प्रणाम किया, हिरण्यकश्यपु देख कर की तंग हो जाता था, कितने अच्छा है, मेरे खानदान में तुम्हें दिखाया नहीं, मैं भी नहीं किया था कभी और पास में जब लेकर आए, पास में आता पादयो पतितम अर्भवकम, शरण के पकड़ करके दंडवत साष्टांग प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु महानिष्ठुर हृदय महाराक्षस था, लेकिन छोटे इतने सुंदर रूप गुण वाले बालक उनके बेटा जब आकर के भरी सभा में दोबारा साष्टांग उनके चरण पकड़ के दंडवत करता है, इतने गदगद हो गया, उनके कठोर हृदय पिघल कर पानी पानी हो गए, तुरंत उठ करके झुक करके उसे उठा लिया, इतने स्नेहासिक्त हो गया, उठा करके गोद में ले गया, तुरंत झुक कर गोद में लेकर के बोला नहीं गया उनसे, नयनं गड़दस्रु धारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा, आंख से आंसू बहने लगा, गला चोक हो गया, उसको सूंघ गया, चाट गया, चुम गया, इतने स्नेह अधिक हो गया उसका, जिसे बालकों को इसे करते हैं, इतने अधिक स्नेह हो जाने से वो उसको किया, सभी ने चाहते थे वो है उसके लायक है, इतने अच्छे बाल, तो गोद में लेकर के बारंबार चुम्बन आदि करके उनको मथा सुंग करके उनको बहुत आशीष करके करके बैठा करके, मेरे बेटा तो कितने अच्छा है, सब प्रकार के आशीर्वाद सब कुछ करके बहुत प्रेम में सिखता करके फिर बोला, कुछ तो बातचीत करेगा ना, वही किरण में मिला है, पूछा होगा कैसे खान पान थे, वो तो खान पान तो डर के मारे किए होंगे, हाल खराब कर देगा, तो पूछा तो पढ़ रहा हूँ अच्छा, तो बोला अभी तक जो कुछ पढ़ा होगा, बच्चा है क्या पढ़ा होगा, बोले कुछ तो पढ़ा होगा, एक हफ्ता अभी गुरुकुल में पढ़ा है, बोले वो हिरण कश्यप सोचता था, बोले पता नहीं उसके याद, बोले जो वो जानता है, बोले जो आप जानते हो, आप जिसको सीखे हो, मतलब कुछ फॉर्मूला तो कि कुछ तो सीखे हो गए हो, जो कुछ आप सीख चुके हो अच्छी तरह से याद है, कुछ मुझे बताओ क्या पढ़े स्कूल में, पूछते ना कि मैं बताओ, तो सोचता जी जो जानता है वही बताएगा, कठिन प्रश्न तो था नहीं, लेकिन उनको क्या पता था कि प्रहलाद कितने दिन के से लिए रहे, हम सब पढ़ते देखते हैं उनको, ये तो बिल्कुल 5 साल के बालक है, इतनी भक्ति कैसे हो गया, लेकिन प्रच्छद पट में आगे कथा आएगा, उनका नि भक्त ट्रेनिंग कोर्स चला था 36,000 साल तक, हाँ, और 2-4-5 महीना नहीं, और ट्रेनर कौन थे निभक्त इंचा नारद जी, लेकिन आश्रम निभक्त आश्रम था नहीं, माँ के पेट के गर्भ था उनका आश्रम वहां पे रहे रहे इतना दिन तक ट्रेनिंग लिए थे, अतः अब जब उनको उनके पिताजी ने पूछा, गुरुजी ने आपने सब जो आपने पढ़ा स्कूल में अब तक उसमें जो आप अच्छा मानते हो, जो आपका अच्छा से आता है याद कर लिया होगा, कुछ मुझे बताओ, तो प्रहलाद ने पिता के गोद में बैठ करके सोचा, पिताजी मुझे पूछ रहे हैं कि क्या मैं पढ़ा, जो मैं पढ़ा हूँ सीखा हूँ उसमें सबसे अच्छा क्या है, तो उन्होंने बोली ये तो 3rd क्लास उन्होंने क्या सीखा है क्या मैं बताऊँ, जो मैं सचमुच सीखा हूँ अपने पापा को बताऊँगा, जो सचमुच सीखा हूँ उसमें से अच्छा जो मानता हूँ बताऊँगा उत्तम, तो उन्होंने बोलना शुरू किए, अब पिताजी को डैडी करके संबोधन नहीं किए ना, पिताजी करके नहीं बोले, प्रणाम करते सब पिताजी करके बोले थे, अभी जब क्या अच्छे आपके मतामत से बताओ, तब बोले हे असुर श्रेष्ठ, हे असुरों के सरदार, आपने पापा को उनके गोद में बैठ कर बोल रहे, वो भी खुश हो गया, पोजिशन बोलने से बड़ा होता ना भाई, पोस्ट पोजिशन को अगर बोले तो ज्यादा हमको समान लगता है, तो उनको असुर श्रेष्ठ बोला, असुरों की श्रद्धा तो है, तो उनको और अच्छा लगा, बेटा मुझे मानता है मेरे पोस्ट को, हे असुर बरी, हे असुर श्रेष्ठ, आप जो मुझे सबसे अच्छा पूछे, मुझे उसे कहा मेरे मत में अच्छा यही है, ये संसार में घर गृहस्थी में जो फंसे हैं और घर गृहस्थी अंधा कुआं जैसा है, उससे निकल करके जंगल में चला जाना चाहिए, जंगल में जा करके हरि के शरणागत हो जाना, यही मैं सबसे उचित मानता हूं, इसी बतंग बात सुन करके हिरण्यकशिप सोचा, थोड़ा हंसने लगा, मतलब बाल बुद्धि, बालक ऐसी अवस्था होते हैं जो जैसे सिखा दे सीख जाए, है ना। नहीं, बालक अवस्था को जो जैसे सिखा दे, बोली वही सिखा दे, वही वही बोलेगा, बोले बेचारा बालक है और कोई सिखा दिया, बोले हमारा कोर्स में तो सिलेबस में तो इसको नहीं है, ये कैसे उसको बोल रहा है बाप। तो समझ गया कि कहीं कोई दूसरा लोग आकर कोई सिखा कर चल जाए, कोई असत्संग हुआ, कोई वैष्णव लोग कोई डिवोटी आकर के घुस गए होंगे, कोई पढ़ा दी, ये बात कैसे कह रहा है, ये त्याग वैराग्य की बात कह रहा है, कृष्ण भजन करने की पूरा। वो सुन करके हंसने लगा, वो जानता था बालकों की बुद्धि ऐसा होता है, बालकपन में जो सीखते हैं वो मरते दम तक रहता है, है ना। क्योंकि जैसे कोई मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाते ना छोटे मिट्टी से, जब तक मिट्टी नरम रहता है, गीला रहता है, जो डिजाइन देना है वो दे दो, सूख जाने के बाद फिर होगा नहीं होगा। तो बालक अवस्था वही गीला नरम अवस्था रहता है, उस समय में जो शिक्षा जो तालीम दे दो मरते दम तक वही बोलेगा। वो सिखा दो इसको पापा बोलो, पापा ही बोलते रहेगा, कोई डैड बोलो तो डैडी बोलते रहेगा, पिताजी जो सिखा देंगे वही। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है जननी जन्मनाम गुरु, सबसे पहले जन्म से गुरु कौन होता है, माँ ही गुरु होता है। क्योंकि वो पापा को भी नहीं पहचानता है वो लड़का, वो माँ ही बताएगा ये तेरा पापा, तब वो सीखेगा, नहीं तो वो भी नहीं जान पाएगा। अभी तक भी केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में किसी भी देश में किसी भी भाषा में जाओ, जो यहाँ के लड़के जो भाषा बोलते हैं उनको कौन सा भाषा बोलते हैं, मातृभाषा को पितृभाषा भातृभाषा नहीं बोलेंगे, मदर टंग। क्यों? क्योंकि माँ से ही सीखे उनको, अपनी माँ से जिसको सीखे हैं वही उनके ओरिजिनल मातृभाषा, माँ की भाषा। माँ जो सिखा देगा उनको चाचू की चाचा की अंकल की दादा जो वही बोलेगा, माँ की भाषा ही बोलेगा, माँ की शिक्षा से आदि दी बिगिनिंग माँ से शिक्षा शुरू होता है, इसलिए मातृभाषा बोलता है। तो उसी समय जो सीख जाएगा मरते दम तक वही शिक्षा मिटेगा नहीं। तो हृणा कृष्ण बोला अब तो बालकपन है, अभी अगर गड़बड़ सीख गया तो आगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ये क्या कर दिया, बोले ये सब कैसे हो गया सिखा। तो थोड़ा हंसने लगा कि कोई जरूर गलती से कोई प्रकार लोग जो जिसको अमर होना नहीं चाहिए इस प्रकार के लोग को आकर को सिखा दिए, नहीं तो वो कैसे सीख पाया। तो उनने बालक को देखकर तो हंसा, कुछ बोला नहीं, इतने सह था, लेकिन आपने स्टाफ को बुलाया, बोला फोन लगा स्कूल में, सीधा डांटा उनको और डायरेक्टर को सीधा रोहड़ी दिस वो काम, बोले सर ऐसा कुछ नहीं, बोले ये क्या है सर, बोले बोले जरूर कोई आकर के सिखाता है ना, कोई नहीं आ रहा, नहीं ध्यान दो आप कैसे पहचाने, कोई नहीं, वो सब पैंट शर्ट पहन कर आते होंगे, आजकल स्टूडेंट टीचिंग में आते हैं पैंट शर्ट पहन कर जाते हैं, होती तिलक लगा कर भी नहीं जाते, तो इसीलिए छिपी करके आते होंगे, कुछ आकर ऐसे प्रचार करके गए, नहीं तो ये कंडम शिक्षा कैसे मिल गया उनको। तो अलर्ट किया उनको, उनको बोला सतर्क हो जाओ और पूरा ध्यान देना कोई बाहर के लोग ना आए, विशेष करके उन लोग को वो नारद के ऊपर नजर रखना, वो ना आ जाए कहीं। तो इसे उनको हाई अलर्ट करके बहुत खिला पिला करके बहुत प्रेम करके फिर उनको वापस भेज दे, बोला लेके जाओ, फिर स्कूल में ले गए कर्मचारी रखे। तो स्कूल में गया, स्कूल में जा करके कर्मचारी लोग बोल दिए, बोले फोन भी आया था, पूरा डायरेक्टर तक हलवा टाइट हो चुका है। जैसे इंस्टीट्यूट में गया लड़का, तो ऊपर से डायरेक्टर से डीन से लेकर के वो टीचर तक स्टाफ तक सब हाई अलर्ट बुलाते हैं कि कुमार साहब कहाँ से, सब आगे मिल गए प्रहलाद के पास, वो छोटे बच्चे थे ना, छोटे बच्चा से कोई बात निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फुसलाते हैं उसको, देखो तुझे ये खिलाएंगे, ये बढ़िया, ये बात बता दो क्या बात है, हम तेरे हैं ना, तो साथ हैं कोई, तो बहुत ऐसे फुसला करके अच्छे चीज बता करके प्रेम दे करके प्यार से पूछने लगे। प्रहलाद महाराज में क्या बताऊं, मुझे तो कोई शिकायत तो है ही नहीं, बहुत प्रेम से पूछे गोद में बैठा करके, अरे बता दो। तब प्रहलाद महाराज जब बहुत पूछे गुरुजी लगने, तो बोले गुरुजी ना तो मुझे कोई सिखाया, कौन सिखा मैं बताऊं, आप क्या समझेंगे, कोई मुझे सिखाया नहीं। मैं तो उन प्रभु के माया को प्रणाम करता हूं जिस माया के चलते आप लोग मोहित होकर भी इस द्रुपदी इस प्रकार ज्ञान में चपड़े फंसे हैं, मुझे भी फंस रहे हैं, उस माया को प्रणाम करता हूं जिसके माया से मोहित है, उन्हीं ने मुझे सिखाया, आप क्या नहीं समझ रहे। तो उनके सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, टीचर को उनका वहां समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले इसी क्या बात, सही सही बताओ कौन सिखाया तुझे। बोले कोई नहीं सिखाया। बोले कैसे नहीं सीखा, तो कैसे सीख गया। तो एक उदाहरण बताया प्रहलाद महाराज ने। बोले गुरु जी आप जानते हैं ना लोहा और चुंबक, कहां जानते हैं, आया मतलब लोहा। मतलब लोहा एक चुंबक बड़ा सा रखा हो और लोहे टुकड़ा आ जाए तो किसी को बोलना पड़ता है चुंबक को जरूरत है क्या, लोहा को काम को ही क्या, उसको ना को बोलना पड़ता है सिखाना पड़ता है, नहीं। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि लोहा पास में आने से उसको खींच ले, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता। लोहे लोहे जातीय द्रव्य जब आया चुंबक के पास, चुंबक खींचेगा, चुंबक का ये स्वभाव ही है, स्वधर्म है। बोले ठीक इसी प्रकार प्रहलाद महाराज बताते हैं, ठीक इसी प्रकार जो हमारे हरि हैं श्री हरि, वो चुंबक जैसा है, महाशक्तिशाली चुंबक, और हम सब लोहे। बोले सबको क्यों नहीं खींचे, रस्ट लगा, और लोहे के ऊपर जब लकड़ी और रस्ट लगा हुआ है और क्या क्या मढ़ा तो खींचेगा चुंबक, इसे चुंबक के ऊपर रख दो तो गिर जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन जो निरावरण लोहा है जिसमें कोई कपट आवरण आदि नहीं है, वो उसको तो छकाकर खींच लेगा। जो कलमस रहित लोहा है जिसमें रस्ट आदि नहीं लगा है, वो चुंबक के आसपास आएगा तो रहेगा, सटाक से खींच लेगा, खींच करके उसमें से जमा देगा, मिला देगा। बोले ठीक हरि के ये स्वस्थ सहज स्वभाव है, कोई निर्मल चित्त वाला भक्त मिल जाए तो उनको खींच करके अपने गोद में ले आए, ये हरि के सहज स्वभाव है, उसमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई किसका दोष नहीं है कि किसको देंगे, चुंबक लोहा को खींचा किसको दोष देंगे भाई, ये दोष नहीं है क्योंकि उनका गुण ही ऐसा है। इत्थं भूत गुणो हरि, हरि का गुण ही ऐसा है, जो कलमस रहित हो गया, जो थोड़ा श्रद्धा और भक्ति भाव जागृत किया हृदय में, उसको खींच लेंगे, जबरदस्ती खींच लेंगे, अपने पास ले लेंगे, अपना बना देंगे। बोले मेरा यही हुआ, मुझे खींच लिए, अब मेरा दोष है ना, हमको तो स्वाभाविक है। लेकिन ये उदाहरण देने पर भी वो समझ नहीं पाए, वो बोले कि आप बकवास करते रहे, लाओ लाठी पीटते। जब बच्चे लोग बहुत फुसलाने पर, खिलाने पिलाने, चॉकलेट देने पर भी सही बात नहीं कहते ना, तब बोलते हैं कि डंडा मारने से सही बात बोलेगा, लाओ डंडा पीटते हैं। अरे कितने डांटने से पीटने से जो वो क्या हुआ, कुछ नहीं, डांट पीट करके देखे कुछ बोलता नहीं, छोड़ दे। बोले जो बोले चलो हम छोड़ देते हैं, इस बार स्ट्रिक्टली पढ़ना है, ये सिलेबस है ये सब पढ़ना है, स्ट्रिक्टली उसको पढ़ाने लगे, पढ़ाने लगे। प्रहलाद महाराज का इच्छा तो था नहीं पढ़ने में ये सब चीज, ये सब पॉलिटिक्स राजनीति है ना, नहीं अब संविधान दंड भेद नीति ये सब पढ़ना उनकी इच्छा नहीं था, लेकिन अब कॉलेज में ही सिलेबस था तो एक कोर्स में था, तो इसलिए पढ़े, फिर पढ़ाने लगे, तो पढ़ा कर खूब पढ़ा, क्योंकि ऊपर से हिरण्यकश्यप का आया था सावधानी, तो इसलिए बहुत लगकर खूब पढ़ाए, पढ़ा करके एक होता है ना टर्मिनल एग्जाम, मतलब वीक महीने दो महीने वो लेकर टेस्ट कर देखे, उसमें भी अच्छा रिजल्ट किया था, टप किया था। तब बोले इस बार तो खूब सीख गया, पढ़ गया, एक बार लेकर चलते हैं राजा के पास। और राजा ने खुद देख करके समझ लगा कि बिल्कुल पक्का है, ये गड़बड़ी नहीं, हम मेहनत किए हैं, हमारा ऊपर जो उनका खराब भावना है बदल जाएगा। तो इस बार और स्टाफ के हाथ में नहीं भेजे, दोनों डीन एंड डायरेक्टर दोनों गए साथ, दोनों लेकर के गए, बोले इस बार तो खूब पढ़ाई लिखाई, वो टेस्ट भी लिए थे, जो मिड टर्म टेस्ट होता था मिड टर्म टेस्ट भी लिए, तो उसमें टॉप किए थे, तो इसलिए वो भी कंफर्म थे इस बार तो हमको बख्शिश मिलेगा, राजा ने हमारा वेतन भी बढ़ा देगा, बहुत हमारा ये हो जाएगा, बहुत आशा करके प्रेम से लेकर के बोले नहीं इसे लेकर गुरुकुल में थोड़ा शायद कपड़ा वपड़ा धोने का मशीन नहीं होगा उधर, तो बस ठीक नहीं था, तो बोले नहीं पहले डायरेक्ट राजा के पास नहीं लेंगे, पहले माँ के पास ले जाते, मैडम के पास ले जाएंगे, वो पहले खिला पिला करके अच्छा से नए कपड़ा पहना ड्रेसिंग पेंटिंग कर देंगे, तो राजा बुरी तरह से फंसेगा देख करके, ऐसे से देख करके खूब प्रेम करता है। अब अच्छा मैंने जो लड़का आपके छोटे बच्चा है जो आप उनको खूब प्रेम करते हैं, अगर वो किस दिन बहुत बढ़िया से नहा धो करके और नया वस्त्र पहन करके चंदन आदि तिलक आदि लगा करके आप कितने अधिक प्रेम करेंगे उनको, है ना? नहीं तो इसलिए उन्होंने और प्रेम को अधिक बढ़ाने के लिए उसको पहले मैडम के पास ले गए, कैद मैडम के पास ले गए, वो जानते थे वहां से स्कूल कॉलेज से आए सब स्टाफ डायरेक्टर साहब लेकर आए, तो माता जी ने तो उनका तो सहज प्रेम था ही अपने बालक के प्रति, तो लेकर के उनको बढ़िया से नहलाए, छोटे बच्चे को नहला करके बढ़िया से सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन आदि लगा दिए, सारे श्रृंगार संजित करके इतने बढ़िया बना दिए, माता ने स्वयं डेकोरेट किए सब अलंकार आदि सज्जा करके, फिर बोले मैडम हम राजा जी के पास ले जाना चाहें, लेकर जाओ, तब उनको लेकर गए, बिल्कुल इतने बढ़िया सुसज्जित, कोई भी देखने से सेल्फी खींचेगा इतने सुंदर हमको तो उनको इतने बढ़िया डेकोरेट करके सजा कर चमका करके और साथ में लेकर के दोनों संध्या अमर का और साथ में लेकर के राजभवन में लाए, राजभवन में लाए, और तो कन्हा जी तो सब समय की तरह सदा की तरह राजभवन में जाते ही सभी को नमन करना सबको सम्मान करना करते हुए गए। अब महाराज हिरण्य कश्यप बैठे थे, देखते ही पिताजी को प्रणाम दूर से किए, पास में जाकर को ही विधिवत चरण स्पर्श करके साष्टांग प्रणिपात करें, और अभी इतने सुंदर रूप था इस बार तो सद धज करके इतने बढ़िया दिखते थे, हिरण्यकश्यप तो देखते ही फंस गया था, और जब आ करके फिर चरण में दंडवत किए वो भी खींच कर उठा, वो भी पूर्ववत गोद में ले करके खूब उसको चुम्बन आदि किया, खूब प्रेम किया उनको, अब खूब गोद में बैठा करके पूछा बोला क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछूं, वो भी डाउट किया था, बोला पता नहीं वही बात फिर रिपीट ना करें, तो इसलिए इस बार क्वेश्चन पूछा, बोला ये नहीं पूछा कि तुम जो जानते हो बता, बोले कुछ गड़बड़ी गलत बता था, बोले तेरे गुरुजी ने जो तुझे पढ़ाया, बोला गुरुजी ने तो ठीक पढ़ाया हमको जरूर, बोले तू गुरुजी से जो अध्ययन किया है, गुरुजी से जो सीखा है, नाम लेकर बोला, तू गुरुजी से जो सीखा है उसमें से कुछ मुझे बताओ, कोई अच्छी चीज बताओ जो गुरु से सीखा आपने, ये बात कुछ हमेशा कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहता था अपने बेटे से, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना चाहता था, तो इस बार कुमार प्रह्लाद सोचे कि पापा ने पूछ रहे हैं गुरु जी से जो सीखा है उसमें से कोई अच्छा बात बताओ, ये दोनों तो हमारे जो आए हैं वो दोनों तो गुरु ही नहीं है, किस माने गुरु है भाई, महामूर्ख है, उनको तो मैं गुरु मानता ही नहीं, तो मानते नहीं थे उनको गुरु करके, तो थर्ड क्लास है, तो गुरु कौन है फिर, बोले मेरे गुरु तो जो गुरु है नारद जी, उनसे मैं खूब सीखा, तो पापा ने अगर पूछ रहे हैं तो गुरु जी से जो सीखा है उसमें से अच्छा बात बताओ, तो मेरे गुरु तो नारद जी, उनसे जो मैं सीखा हूं इतने लंबा समय से, उनमें से जो वो सिलेबस से जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट था उसको मैं बताऊं, बोले नारद जी तो भक्ति के बारे में खूब सीखा, भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है भक्ति अंग नवधा भक्ति के बारे में बोला, और जब पापा बोले पापा गुरु जी से मैं सबसे जो अच्छी बात सीखा हूँ उत्तम बात वो क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। तो ये जब नवलक्षण वाली भक्ति जब बताने लगे नवदा भक्ति को, हिरण्यकश्यप में आंख निकाल करके
देखा डील डायरेक्टर दोनों खड़े थे।
बच्चा ऐसे बोल रहा था, गोद में था, सीधा इधर लाल कर देखा, उनका कपड़ा खराब हो रहा था, थर 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 कांपे खड़े खड़े राजभवन में। बोले सरकार ऐसे मत देखिए सरकार। ये अच्छा आपका हॉल है, यहाँ मत देखिए इसे, थोड़ा सा वोल्टेज कम कीजिए। तो देख करके बोला किरे ये क्या बोल रहा है, क्या सीखा, क्या पढ़ा तुमने? वो तो देखने से डर गए थे। उसे डांट करके बोला, वो तो कंपी मच गया। वो तुरंत बोले हम ब्राह्मण दया, हम ब्राह्मण बालक है, गुरुपुत्र है आपके, ऐसे मत करो दुष्ट मत, हम सत्यवादी है, बिल्कुल सच बताते, हम नहीं पढ़ा, हमारा कोर्स में नहीं, लाइब्रेरी में नहीं है किताब, ना सिलेबस में है लाइब्रेरी, ना हम ही खुद नहीं जानते क्या बोलता है, ये जो बोलता है वही जाने, हम नहीं जानते सरकार, हम बिल्कुल नहीं सिखाए, कान पकड़ते नाक पकड़ते, जो कसम खाना है खा ले, हम नहीं सिखाए। अब जो गुरु पुत्र इतने कसम खा कर बताते हैं तो समझ गया पुत्र डर के मारे वो नहीं सिखाते। तब उनके ओर मुड़ा, बोला अरे मैं दो दो बार तुझे टेस्ट किया, तुझे गुरु खड़े के सामने वो बोलते हैं तुझे नहीं पढ़ाया, तुझे नहीं सिखाया, ये सब कहां से सिखा तुमने, कौन तुझे सिखा दिया? उनको पूछने लगा, जब उसको डांट कर पूछने लगा तो प्रधानमंत्री से पापा के गोद में बैठे थे, तुम गोद में रह करके, और उनका थोड़ा मूड चेंज होने लगा, बोले ये क्या बार बार कह रहा है? तो उनको बताने लगे, बोले पापा ये गुरु जी तो सीखे नहीं, वो क्या सिखाएंगे, उनको खुद ही पता नहीं वो क्या सिखाएंगे, अब मैं आपको बताऊं आप भी क्या समझेंगे, आप भी मूड है, ए भी मूड है, और निडर थे, बिल्कुल भय नहीं था। सच बताऊं जो भगवान के साथ संबंध जिसका हो जाता ना, उसका सबसे सिम्टम, पहला सिम्टम है निर्भयता, अभयम सत्य संशुद्धि, भयहीन हो जा। आप बोले क्यों? आप देखिए आम जनता में हमको कई प्रकार के तकलीफ आता है, दुख आता है, अगर कोई यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति, पूरे छावला गांव के जो सबसे बड़े धनी व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, कोई आकर आपको बोला अरे भाई साहब मैं आपका साथ हूँ, डरो मत, ये मेरा नंबर रखो, मेरे प्राइवेट नंबर भी रखो, मेरे दोस्त ये नंबर भी रखो, किसी भी से मुझे फोन करना, अब मैं हूँ साथ में कोई, तो आप कितने आश्वस्त हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, बोले हमारे साथ ही है, तो आप कितने निर्भय हो जाएंगे, लेकिन इतना नहीं होंगे लेकिन फिर भी आश्वस्त हो जाएंगे कि मेरे साथ। लेकिन अगर केवल इस गांव के कोई बड़े व्यक्ति नहीं, वो दिल्ली के प्रधानमंत्री आपके घर में आकर आपके साथ मित्रता करे, हाथ मिलाकर बैठ करके जाए, तो और दो चार सिक्योरिटी आए सबसे लगा दे, उनका नंबर रखना कोई बात, मेरे स्पेशल ऑर्डर ख्याल कर, तब कैसे अपने निडर फील करेंगे? और अगर प्राइम मिनिस्टर खुद आकर बोले तो? लेकिन ये जितने मिनिस्टर है, जितने उनका ड्यूरेशन कितने तक है, उसके बाद में कुछ है नहीं, उनका पद चला ही जाता, लेकिन फिर भी इतने क्षणिक समय हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनसे थोड़ा सा आश्वासन वाक्य पा करके हम इतने हो जाते हैं कि अब पैर भूमि में ना लगे, धरती में ना लगे, ऐसा हो जाता है। यह मेरे उनके साथ पहचान है, फोन कर सकता हूँ, मुझे पता है हमारा उनके साथ पहचान है, क्या समझे मेरे चाचा होगा, ये थोड़ा सा कनेक्शन हो जाता, हम इतने हो जाते हैं, किसी का थोड़ा पहुंच है इधर उधर, कोई नेता के साथ संबंध हो जाए तो कितने हैंकड़बाज हो जाते हैं। अब जिनका डायरेक्ट संबंध सीधा भगवान के साथ हो, उनका कोई पोस्ट पोजीशन जाने सरकार गिरने वाला है, ऐसे कुछ चांस है क्या बताओ? दी इटर्निटी, दी इटरनल, उनके साथ जिनका संबंध है वो जिसको गोद में उठाकर बोले बच्चा डोलवा, तो कितने निडर हुआ होगा, कितने निडर हुआ, तो क्यों डरेगा, पापा के गोद में बैठे थे इसलिए तो पापा को सीधा बोला तू असुरों के सरदार, तू क्या समझा मोड़, पहली बार तो इसे बता था, सुन लिया था कुछ बोला नहीं था, इस बार सभी के सामने उनके गुरु जी के सामने ही इस बात कर रहे, तो प्रारंभ मरोले तो आप नहीं समझेंगे, नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बोले क्यों रे नहीं पढ़ाते, बोले नहीं ये बात उन वो नहीं जानते, कैसे नहीं जानते, उन्होंने शुक्राचार्य के पुत्र है, इतने बड़े ज्ञानी है, तो वो जो बात कहते हैं वही प्रामाणिक होना चाहिए, वही शास्त्रीय है, और तुम उनकी बात को छोड़ करके कचरा बात क्या बोल रहा है, विष्णु भक्ति करना ये तो अशास्त्रीय है, क्योंकि आपके गुरुजी जानते नहीं, गुरुजी बोलते नहीं, जो गुरुजी बोलते हैं वही शास्त्रीय होना चाहिए। बोले ये तो मूर्ख गुरुजी है, वो जानते क्या, बोले क्या नहीं जानते ना, नते विदुः स्वार्थ गति नहीं विष्णु, बोले ते ना विदुः, वो नहीं जानते हैं, उनका ही भलाई किसमें है वो नहीं जानते, तो मेरा भलाई क्या करेंगे, उनको तो ये भी तो पता नहीं है, उनके स्वार्थ असली संपूर्ण जनता के एकमात्र स्वार्थ, एकमात्र हित, एकमात्र गति ही विष्णु है, ये बात उनको पता ही नहीं, आपको भी पता नहीं, तो मैं क्या करूं बताऊं पता नहीं, फिर कैसे पता चलता है, हमने इतने बड़े शास्त्र के हैं, पंडित है, डीन डायरेक्टर है हमारे राज इंस्टीट्यूट का, क्या बात कर रहे हैं, बोले ये जो किताब आपका है सब कुछ इसको पढ़ने से क्षमता है नहीं पढ़े, बोले कैसे पता चलेगा, तो आगे बोलते हैं कि और पता तो चलता है केवल भगवत भक्तों के अनुगत होने से पता चलता है, और भाई नहीं तो कैसे पता चलता, तो इस प्रकार बातचीत करने लगे, ओ युक्ति करने लगे, बोले इस बोलते बोले नहीं उनका हो ही नहीं सकता, जान ही नहीं, प्रयास करे तो मतिर ना कृष्णे परतो सुतो वा मिथो विपद्येत गृह प्रदानम, वो बेचारे घर गृहस्थी में फंसे, आप भी फंसे, वो भी फंसे, अगर स्वयं प्रयास करे तभी कृष्ण के बारे में जान नहीं सकते, दूसरे उनकी मदद करे तभी जाना नहीं सकते, दोनों मिलकर करे तभी नहीं जाने, तभी नहीं हो सकते, मतिर न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह प्रदान, परतः स्वतः, कोई पर आदमी सिखा तभी नहीं सीख पाएंगे, स्वतः तभी नहीं सीखेंगे, दोनों के द्वारा भी नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्रत पालन कर रहे हैं, क्या व्रत ना, गृह व्रत, जैसे हम एकादश अग्रह व्रत लेते हैं कि कम से कम कुछ घंटा के लिए सो कॉल्ड ग्रेन्स नहीं खाऊंगा कुछ करते हैं, बोले ऐसे व्रत लेते हैं, हम इसमें फंसे रहेंगे, रचे पचे रहेंगे, गृह प्रदान अदांत गोभीर, इंद्रिय के ऊपर कोई संयम नहीं है, विशतांत मिश्रम, विशतांत प्रवेश करते हैं, तामिश्र नरक में प्रवेश करते जा रहे हैं, और अंधकूप जाते हैं, अंधकूप इसलिए कहा गया उसको बारम्बार अंधकूप कहते हैं, जिसे कि कुआं है और अंधकार है, उसके ऊपर ढांका हुआ घास फूस आ गया, पता नहीं आप गए घास फूस दुम गिरे कुआं अंदर है, बोले ऐसे ही बाहर से तो कुछ दिखता है, अंदर है वो डा। हमारे एक प्रधान आचार्य हो गए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक भजन में गाते हैं, श्रेष्ठ भजन शायद जब जानते होंगे, जदि ते हरि पाद स रोज सुधा रसपान परम हृदयम सततम, जदि ते हरि पाद स रोज सुधा रसपान परम हृदयम सततम परिहृत्य गृहम कलिभावमयम्, परिहृत्य गृहम् कलिभावमयम्, भज गोद्रुम कानन कुञ्ज विधुम् भज गोत्र मकान कुंज विधुम। ये सबसे पहले उद्रम कानन भजन बोलते हैं कि यदि यदि सतमतलब यदि यदि आप लोग ते क्या हम लोग क्या करें ना यदि ते हरि पाद सरोज सुधा। हरि मतलब भगवान, हरि के चरण से, सरोज मतलब कमल, हरि के चरण कमल से जो सुधा जो मधु निकल रहा है उसके रस को अगर पान करना हमेशा चाहते हैं सततम। यदि ते हरि पाद सरोज सुधा रस पान परम सततम, हमेशा उसको पीते रहना चाहते हो, भगवान के चरण कमल से सुधा निकल रहा है उसको पीना चाहते हो, अगर चाहते हो यदि शब्द इसलिए यदि ते हरि पाद सरोज सुधा रस पान परम तयम सततम, तब क्या करना चाहिए कंडीशन बताते हैं। सबसे पहले कंडीशन बताते हैं परिहृत्य गृहम, क्या परिहृत्य गृहम, ये मेरा कहना नहीं है परिहृत्य गृहम, लेकिन क्या कहते देखिएगा कौन ये बात कहा, भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने नंबर वन गृहस्थ थे हमारे परंपरा में, जिनके बारे बचते एक डजन परिवार थे उनके। आप बोलेंगे कैसे बात कर रहे हैं, ये स्वयं तो इतने मजबूत गृहस्थ है, हमारा तो एक दो है, उनके तो डजन वाले हैं, वो बोलते हैं कैसे, लेकिन ध्यान से समझिए क्या कहते हैं। बोलते हैं कि यदि आप चाहते हैं सबसे पहले परिहृत्य गृहम, कौन सा गृहम, न कली भावमयम, जिन घर कली भाव से भावित है इस घर को त्याग करना चाहिए। ये बात कहते हैं कली भाव से भावित घर को छोड़ देना पड़ेगा, इसमें रह करके पा नहीं सकते। जिन घर में विग्रह विराजमान है, ठाकुर सेवा हो रहा है, हरे कृष्ण मंत्र होता है, नियम पालन होता है, सदाचार सदधर्म, इस घर को छोड़ने के लिए नहीं बोलते ना, नहीं छोड़ने, वो तो यहां तक कहते हैं जेदि ने गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाय, घर में जिस दिन भजन कीर्तन होता है तो गोलोक वृंदावन ही आ जाता, उसको छोड़ने के लिए नहीं बोलते। तो इसलिए सद गृहस्थ घर में सब इस प्रकार घर घर में तुलसी ठाकुर पूजा हरिनाम ऐसे करो तो काहे घर छोड़े, ये सब कोई जरूरत नहीं, इधर उधर जाना है करना, घर में रह करके वही वृंदावन हो सकता है, वही घर ही वृंदावन। परिहृत्य गृहं कलिभाव वयम, उसको छोड़ करके कलिभाव कहीं तो घर को छोड़ कर करूंगा क्या, छोड़ करके दिल्ली जाएंगे इधर उधर उन्होंने कहेंगे क्या करना। भज गोत्रम कानन कुंज विधुम, गोत्रम कानन के कुंज के जो चंद्रमा है ओ गोत्रम शशि श्री गौरांग महाप्रभु के भजन करो, तब जा करके ये हरिचरण कमल के सुधा को प्राप्त कर पाएंगे गौरांग भजन करने से। तो इसी बात को समझाते हुए बोलते हैं कि जब हम घर में रहकर भजन कर सकते हैं, गौरंग जाके भजन कर सकते हैं, गृह था कब बने था कब कर सकते हैं, तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कलिभाव से ग्रसित हो गए तब तो फिर कहीं रहो, चाहे वन में रहो वही बात, चाहे घर में रहो वही बात। तो इसी बात को प्रहलाद महाराज कहते हैं मतिर ना कृष्ण, क्योंकि इस घर में फंसे हुए हैं आपके जो स्टाफ, आपके डायरेक्टर साहब गुरुजी, आपके पूरे सारे स्टाफ और आप सभी दोनों फंसे तो कैसे समझेंगे, मैं जो बता रहा हूं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने जो बताया नवलक्षणा भक्ति के बाद उसके ऊपर में नारद जी थोड़ा और प्रकाश डालते हैं कि क्या कहे उन्होंने, उनको समझने के प्रयास करते हैं। बोलते हैं कि संपूर्ण मानवता का सिद्धि का एक सरल मार्ग यही है, संपूर्ण मानव समाज का अगर जीवन के लक्ष्य को कोई साधित करना चाहता है अति सुगम सहज सरल उपाय है यही भक्ति मार्ग और कोई नहीं है। तो कैसे भक्ति कैसा है न भक्ति कैसा है वो बताते हैं, नौ प्रकार के अंग से साधित होता है भक्ति, नव लक्षणा, नौ प्रकार की अंग होता है भक्ति का, नवांग भक्ति। इसी में से अगर नौ को नौ करो तो अच्छा है, दो चार करो अच्छा है, एक भी करो तब भी अच्छा है। कोई एक भी अंग अगर आप करो तो ही आपके जीवन की पूर्णता को प्राप्त करा देने में समर्थ है, सर्वसमर्थ है। एक एक अंग अपने आप में ही सर्वसमर्थ है, लेकिन सभी शक्तिशाली समर्थ होते हुए भी फिर इस प्रकार क्रमानुसार में क्यों बोले? बोले फिर भी एक क्रम है। बोले क्यों? बोले एक नहीं हो तो दूसरा हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले इसीलिए सबसे प्रथम अंग है श्रवणांग, श्रवणम, श्रवण भक्ति। ये भक्ति का प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति का शुरुआत श्रवण से होता है। यद्यपि कीर्तनाख्या भक्ति का महिमा शास्त्र में खूब गाया गया, कोलो तत् हरि कीर्तनम, हरे नाम एव केवलम, कीर्तन को बहुत व्याख्या गया, लेकिन कीर्तन हे महान करके कैसे जानेंगे? हाउ डू यू नो? श्रवण के माध्यम से। क्या कीर्तन करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे पता चलेगा? श्रवण से पता चलेगा। तो इसलिए श्रवण इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है श्रवण कि अगर किसी को परिवर्तन करना चाहते हो, हृदय परिवर्तन करने का उपाय आज तक मेडिकल साइंस भी नहीं है। बिगाड़ सकते हैं, सजाड़ नहीं सकते। हृदय परिवर्तन करने का शक्ति केवल सदकथा सत्संग के माध्यम से हो सकता है। बिना सत्संग विवेक ना हो, विवेक जागृत इसी में होता है। ये साक्षात भगवत कृपा है, सत्संग और कुछ नहीं। इसी को कहते हैं श्रवण का इतने महत्व है। आप और हम अभी जितने यहां बैठे हैं, सच बताइए, अभी तक जो भी कुछ आप जानते हैं, आपके नाम क्या है, आपके घर कहाँ है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, जो भी कुछ आप सीखे जानते हैं, कैसे जाने? सुन करके ओनली वन उपाय, सुन करके जानना। तो सुनना अपने आप में इतने महत्वपूर्ण अंग है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवत गीता पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान ज्ञान के ग्रंथ माना गया। जुगपत, जब तक जुग रहेगा तब तक भगवत गीता के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकता। उसका महानता था, है और रहेगा, ऐसे ग्रंथ। लेकिन ये भगवत गीता जो न जाने कितने युग से कितने युग पर्यंत रहेगा महान होकर के, उस भगवत गीता को खोलते हैं सबसे प्रथम अध्याय के सबसे प्रथम श्लोक में जो वक्ता है, ओपनिंग जहां से होता है, शुरुआत जहां से करते हैं, वो नायक कौन है? अंधे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वाच यही शुरू होता है ना भगवत गीता। धृतराष्ट्र के चरित्र किस प्रकार सच्चरित्रवान थे वो पता है सबको ना? हम इतने धार्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू उनके नाम से शुरू करेंगे? अरे कोई मंगलाचरण से शुरू करते, मंगलाचरण के उन्हीं के चरण उन्हीं के नाम लेकर शुरू करो। धृतराष्ट्र के नाम इतने ऐसे आदमी था। ये बात क्या व्यासदेव जी को नहीं पता था? धृतराष्ट्र के बारे में हमसे ज्यादा व्यासदेव जी को तो पता था ना, वो जानते थे। अरे वो क्या जाने व्यासदेव जी, कृष्ण को तो पता था कि मेरे नाम से गीता चलेगा, तो पहले कैरेक्टर वो है, एडिट करते हैं उसको, वो एडिटिंग नहीं की। बोले क्यों? जान बुझ करके सबसे ओपनिंग शुरुआत में धृतराष्ट्र के नाम से क्यों कोई गीता पाठ करेगा, शुरू करेगा? क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का भले सारे अवगुण था, खराब आदमी था, लेकिन एक ऐसे महान गुण था जिसके कारण उनको गीता के प्रथम चरित्र के रूप में चुना गया। एक गुण था जो सारे अवगुण को ढंग करके रख दिया, उनको महान कर दिया। एक गुण और कुछ नहीं था, ये श्रवण के लालसा था। उन्होंने पूछे, संजय मैं सुनना चाहता हूं, संजय मैंने सुनना चाहता हूं। सुनने की इच्छा आपने आप में इतने महान गुण है, उनको इस पोस्ट पर रख दिया। श्रवण लालसा सारे गुण से सबसे महान गुण, उससे हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए भक्ति जो नौ प्रकार के है, ये नौ प्रकार के भक्ति सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वस उसमें सभी से सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण श्रवण अंग है। श्रवणांग सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? नाम रूप गुण लीला परिकर आदि भगवान के जितने सारे वस्तु, उनके बारे में सुना करो, श्रवण करो। श्रवण करने के बाद उससे काम चलेगा, श्रवण के बाद कीर्तन करना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलने के लिए सुनना पड़ेगा ना, सुने नहीं तो बोलेंगे कैसे? तो इसलिए सुन करके फिर बोलना चाहिए। बोले तब कंप्लीट हो, बोले ऐसा कोई बात नहीं, बोले बोल ना बोल कर भी हो जाए, केवल सुनने से, बोले केवल सुनने से हो जाएगा, नहीं हुआ है। परीक्षित महाराज ने बोले थे क्या, श्रवणम परीक्षितम, केवल सुन करके सिद्धि प्राप्त कर गए परीक्षित महाराज, केवल बोल करके सुखदेव गोस्वामी। कोई भी एक अंग के द्वारा ये प्रमाण भरे पड़े हैं कि एक एक अंग सिद्धि कर चुके हैं। ये भक्ति इतने सर्वसमर्था है, किसी प्रकार से कोई एक अंग को करे तो पूर्णता प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर सर्वांग पूर्णता करना चाहते हैं तो फिर यही उसका सीक्वेंस है, क्रम है। सबसे पहले श्रवण होना चाहिए, श्रवण के बाद कीर्तन होना चाहिए, उसके बाद स्मरण होना चाहिए। इस प्रकार के क्रम बताए, इस क्रम के अनुसार जो नौ प्रकार के भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम फिर पाद सेवनम, ये सभी का एक एक अंग का बताने करके अंत बोले आत्मनिवेदनम। श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन मतलब भगवान के बारे में बोलना। जब कोई सुनने वाले हैं तो बोलो, सुनाने वाले हैं तो सुनो, नहीं तो कोई नहीं मिले तो स्वयं नाम जप करो, स्वयं बोल करके सुनो, श्रवण कीर्तन स्मरण करो, याद करो बैठ करके, चिंतन करो, श्रवण कीर्तन स्मरण। पाद सेवनम, पाद सेवन है, घर में विग्रह है, चरण स्वा की सेवा करो, नहीं तो नहीं, कम से कम जहां मंदिर है वहां चल करके जाओ, जहां कथा होता है वहां चल करके जाओ, परिक्रमा करो, ये सब पाद सेवन के अंग है, ये पाद सेवन करो। पाद सेवनम अर्चनम मतलब पूजा, पूजा करना चाहिए उपचारों के द्वारा, धूप दीप पुष्प माल्य नैवेद्य आदि के द्वारा, उपचार के द्वारा भगवान की अर्चना पूजा करना। अर्चनम बंदनम स्तुति करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना। दास्यम मैं भगवान की दास हूं, उनके सेवक हूं, इसी भाव से उनकी सेवा करना, दास्यम। सख्यम सखा रूप में, दास से थोड़ा और ऊपर स्टेज में सखा, सखा भाव से भगवान की सखा के रूप में उनके साथ व्यवहार करो, सेवा करो। सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन में कहते हैं वो इसी प्रकार के अंग है। आचार्यगण कहते हैं आत्मनिवेदन का समझाने के लिए, बोले जैसे वो तो उदाहरण दिए हैं कि पशु का, लेकिन आजकल तो कोई गाय बैल तो पशु तो रखते नहीं, पहले जमाने में खेती होता था बैल से, तो जिसका बैल होता था वो खिलाता पिलाता था, बैल को रखा था, लेकिन किसी जरूरत पड़े वो बेच दिया उसको अपने। आजकल तो बैल भैंस तो होता ना हम लोग का, सब छावना गांव में तो प्रसिद्ध होगा भैंस, तो आपका भैंस था, भैंस था लेकिन क्यों आपको जरूरत पड़ा बेच दिए, भैंस होता भैंसा बोलते भैंसा तो भैंसा को पैसा से बेच दिया। जब बेच दिए जो लिया खरीद करके आपसे, वो तो ले लिया उसको, आपको पैसा दे, अभी वो भैंसे को, भैंसा का जो खुराक उसको खिलाना पिलाना कैसे क्या होगा, उसका देखभाल करना आपका चिंता होगा, किसका चिंता होगा है उनका। जिस समय आप नोट लाए उनको हवाला कर दे उनका, उस समय आप टेंशन फ्री, और भैंसे का चारा, उनका खिलाना नाना, जो कोई देखभाल कुछ, आप बिल्कुल फ्री हो गए उससे। बोले ठीक इसी प्रकार जो साधक भक्त है वो भगवान को जब आत्मसमर्पण करता है, आत्मनिवेदन करता है, कैसे करता है, बोलता है कि मेरा ये शरीर, मेरे वाणी, मेरे मन, वो मैं दे दिया उनको, जो दे दिया आप उससे क्या करना, उनके मटना सुनता है, जिसको दे दिया उनका है, मेरा थोड़ी है, बोले बेच दिया मेरा कुछ नहीं, ये शरीर को क्या हो रहा है, कैसे जा रहे, किससे, बोले उनका है, मैं तो, मेरा तो है नहीं, उनको दे दिया। पशु की गाड़ी को बेच देने से जैसे आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, सारे दायित्व उनका आ जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व उनका होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान को दे दिए, मतलब सारे उत्तरदायित्व भगवान का है, वो चाहे उसको खिलाए ना खिलाए, बचाए मारे, कुछ भी करे, छोड़ दे, हमको लेन देन नहीं है। ठीक इसी प्रकार काय मन वाक्य से उनको दे करके हम फारिक होकर बैठ जाए, इस प्रकार स्थिति बेचे हुए पशु के समान आत्मनिवेदन। तो इसी प्रकार से पुंसा अर्पिता, पुरुषपति अर्पित हो करके क्रियते भगवती यद्धा, भक्ति उत्तम है, ये उत्तम भक्ति माना गया, उत्तम भक्ति करके, उत्तम भक्ति की शिक्षा जब दे दिए और उल्टी और गाली सुना दी उसको नहीं समझ पाया करके, तो हिरण्यकशिपु तो एक तो गुरु जी से पूछा, वो भी मना कर दिए, हाथ जोड़ के बोले हम नहीं किए, और वो सारे अनशन ऐसे बोलते चला जा रहा है, ये सब सुनने के बाद में, और इतने उनका गुस्सा बढ़ गया, बहुत बोले, बोले बहुत हो गया, अब सुन सुन करके उनका बिल्कुल स्नेह ममता बदल रहा था, जो इतने आसक्त था, इतने चुम्बन करता था, उनको गोद में बैठा कर कितने प्रेम स्नेह करता था, लेकिन अपने शत्रु पक्ष का गुणगान सुन करके, निडर होकर जो करा सुन करके, बिल्कुल मूड चेंज हो गया, बदल गया उसका, सारे ममता कठोरता से परिणत हो गए, जो नरम था गर्म हो गया, बिल्कुल ऐसे गर्म हो गया, सुनकर बोला बस करो, मेरे सामने मेरे शत्रु का वर्णन करता, तेरे दादा को मारा उन्होंने, हिरण के बद क्या था, तो फिर भी उनके एक पार्टी के लोग होता है, ऐसे गाली दे करके गोद से उठाकर पटक दिया, राजभवन में गोद से उठाकर फेंका उनको सबके सामने, सबने राजा फेंक दिया उनको, छोटा सा बच्चा फेंका उनको उठाकर, उसका कुछ हुआ ही नहीं, फेंक दिया उसको उठाकर, तो फिर अर्डर किया, बोला उनको बोलू से ले जाओ, उसको मार दिया जाए, फिर उनको इतने हार्ड हो गया, जिनको इतने प्रेम करता था, इतने प्रेम करता था, आज केवल विष्णु विद्वेषी प्रहलाद का दोष क्या था, इतने ऊपर अत्याचार क्यों, दोष केवल यही था कि भगवान के गुणगान किए, भगवान के गुणगान किए, इसी कारण से अपने जन्मजात पिता होकर भी वही युधिष्ठिर महाराज पूछे ये कैसे संभव है, इतने आसक्त पिता और इतने सुंदर गुणवान पुत्र, उनके प्रति इतने कठोर कि उसको मारना चाहेगा, कैसे हो सकता है, बोले यही से हो सकता है, ये हुआ है, अगर शत्रु का बड़ाई खूब करे तो इसे उठाकर भगवान, तो कई लोग बोले, बोले राजा आपके बेटा है, इतने सुंदर कुमार है, कितने गुणवान, कितने सुंदर, बोले आप लोग नहीं जानते, मैं समझ रहा हूं, मैं जानता हूं मेरा है, लेकिन नहीं समझ रहे हैं, अगर कोई अच्छी चीज जंगल में भी मिल जाए ना, उसकी घर में लाकर रखने के लायक है, लेकिन घर में कोई बीस पैदा हो जाता है तो उठा के तुरंत फेंक देना चाहिए बाहर, बोले ये देखो क्या मेरे खानदान में क्या निकला, बोले तो बीमारी है, महाव्याधि है, बोले अगर आपके शरीर में कई अंग में एक व्याधि आ जाए, जैसे लेप्रोसी या कैंसर से कोई अंगूठी में कहीं से आ जाए, कोई अंग में आ जाए, तो उसको अगर पता चल गया तो क्या करना चाहिए, उसको रखेंगे पालेंगे ना, वो तुरंत अंग को काट कर फेंक देंगे, वो स्प्रेड आउट ना हो, बढ़े ना, इसलिए उसको वहीं से उखाड़ कर फेंकेंगे, बोले ये व्याधि है, अभी उसी के चलते हो ना हो और बाकी तीन लड़के हैं वो भी बिगाड़ ना जाए और किसी को और ना सिखा दे, तो अभी से उसको निकाल देना, हटा देना चाहिए, वही ठीक। जैसे एक बोरा आलू है, अगर एक आलू सड़ा हुआ है पूरा बोरा ही दुर्गंध होगा ना, और कितने धुलाई करो इधर से हटाकर इधर को दुर्गंध नहीं जाएगा। जब तक वही सड़ा हुआ आलू को उठाकर फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे तब तक नहीं जाएगा। तो बोले इसलिए एक ही उपाय है उसको टेकआउट करना है। बोले तो इसलिए मैं उसको निकाल देना चाहता हूं, ये अपना अंग होते हुए। बोले अब बेटा क्या, जब स्वयं का मेरा अपने शरीर का अंग भी होता तब भी काट कर फेंक दिया जाता है, क्योंकि आ गया उससे बीमारी, तो ये महाव्याधि आ गया तो मैं कैसे रखो उसको, मेरे खानदान बेकार कर देगा। तो उसको ले जाओ, तो उसको वैसे समझा करके आपने बिल्कुल नीति के साथ में और पक्का के साथ अर्डर दिया, लेकर के मारो उसको, मार दो उसको, मार दो करके के कठोर आदेश दे करके पता लगा कि इतने जोर से मैंने फेंका, कुछ तो हुआ नहीं उसका, कहीं फैक्चर फैक्चर होना कुछ नहीं, कुछ लगा नहीं, चेंचा कुछ आवाज भी, रोया भी नहीं उन्होंने, तो वो लोग मार पाएंगे। मन में थोड़ा उनका शंका था, लेकिन फिर बोला नहीं बच्चा है उसे क्या है, लो उसको मार दो, मेरे सामने नहीं हड़प, मेरा बेटा है मैं नहीं देखना चाहता उसको मेरे सामने मरते हुए, पिता है ना सामने मरते हुए थोड़ा सहन नहीं होगा, मेरे सामने से हटा लो लेके मार दो उसको। तो बधिक लोग होते हैं जिनको राजा राजा रखते हैं मारने के लिए, दंड देने के लिए, उनकी इस प्रकार से खिला पिला कर रखा जाता है इस तमोगुणी लोगों को, तो उन लोगों को दायित्व दिया गया उनको लेकर मारने के लिए, अस्त्र शस्त्र लेकर के उनको बधस्थल में लिया गया, लेकर के सारे अस्त्र से घेर करके 10-5 लोग को उनको अटैक किए मारने के लिए। प्रहलाद महाराज निडर, उनको तो डर तो था नहीं, वो तो गोविंद परिरंभित, वो तो हमेशा फील करते थे मैं पापा के गोद में हूँ, वो काहे को डरे, वो तो चुपचाप हरि स्मरण में रहे, हरि के स्मरण करते रहे। ओ बेचारे भाला होता ना जिसका एक होता है, भाला खड़ग और जितने प्रकार के मारणास्त्र था सारे अस्त्र लेकर प्रयोग किए, शाम को रिपोर्ट आया, सुबह हम लगे थे रिपोर्ट, हिरण कश्यप बैठा था, नेट डाउनलोड करता था रिपोर्ट क्या आ रहा देखने के रिजल्ट, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आया, बोला सर सर माफ कर, क्या हो गया ना सर, सारे अस्त्र खराब हो गए, बैंड हो गए, सारे बैंड हो गया, उनके हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है, जो लोग सब अटैक कर रहे थे, तो उनका क्या होना, हो बैठा कुछ नहीं हुआ। आप समझ लो उनका मूड क्या होगा, बड़े उत्सुकता से बैठा था, अब ये खबर आया कि ये सब उनका वेपन्स खराब हो गया, अब उसका कुछ नहीं हुआ, सुनकर के कैसे हो गया बच्चा 5 साल का बालक, तो तुरंत अड़ बसवला तो लोग बेकार है कर नहीं पाते। काल उनका ऐसा करना, बड़ा हाथी, हाथी सबसे बड़ा गज जो है दिग्गज महाभारी हाथी को लेकर आओ, और उनको रखा करके 2-4 हाथी उसके ऊपर पैदल में उसको चलाओ, हाथी के पैर के नीचे छोटे बच्चे अगर जाए तो बिल्कुल पीस कर चटनी जैसा हो जाएगा, है ना, तो बोला उसको पीस डाल। राजा आदर्श हो गया, उसको भी अटके बैठा, इस बार तो जाए हाथी के पैर के नीचे, वो क्या है कोमल हाड है, चूर हो जाए, थोड़े बैठा था, वो एक बार नहीं कई हाथी लाए, वो कई बार चलाए, एक बार चला दे नहीं, हाथी को बांध कर महाबत आया, बोले देख करके उनके बख्या स्थल पर हाथी 2-2 बार ऐसे खड़ा होकर और दबाया, दबा करके जाए, फिर रिटर्न करके फिर आए, फिर जाए, शाम तक करते रहे वो काम, कई बार हाथी ने, हाथी तंग हो गया, बोला क्या विक्रांत ले में लगा के बच्चा, और वो मस्त हरि स्मरण में हाथी के पैर दर्द हो गया, एक हाथी ने कई हाथियों का पैर दर्द होने लगा, और महाबत भी बोर हो गए, और शाम की रिपोर्ट आया, महाराज माफ करे हाथी साला का ये प्रयास विफल हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका। और आश्चर्य नहीं हो सकता, ऐसा करो विषधर सर्प से उसको डसाओ, उनका सर्प कष्ट को यहां ले जाओ, उनके डस कर उसको मरवा दो। तो राजा देश वाला बोला आज तो सांप तो काट देंगे, मर गया, विष तो बहुत विषाक्त सर्प ले जाए, ऐसे ऐसे उनका होता था, जहाँ सांप लोग रहा करते थे, सप्रा लोग रहते हैं, सारे जाति विषधर सांप रहते हैं। बड़े सांप तो ऐसे ही उग्र होते हैं, बड़े क्रोधी होते हैं, बिना मतलब के काटते हैं, बड़े क्रोधी होते हैं। तो उनको उग्र करके उसके बीच में उनको डाल दिया गया। जैसे डाल दिए सांप को, खोल दिया गया, सांप तो वही आपने क्या बोलते हैं उसको, फन निकाल करके पूछ पर खड़े होते, फुत्कार करते हुए दौड़े, बड़े बड़े नाग सब, बड़े बड़े सब कोबरा सब, विषधर सर्प दौड़े। प्रहलाद को तो भय था नहीं, गोविंद परिलंबित हरि स्मरणम, हरि शरण में था। सांप दौड़ कर, सब लोग देख रहे थे, कैमरा वाले फटाफट रेडी थे, कैसे कट, बहुत चित्कार करके सांप फुत्कार करके आए, आकर के स्पर्श ना करे, ऐसे चले जाए। पता नहीं उनको कहां से बुद्धि आया, बोलते क्यों दांत खराब क्यों करे। वो नहीं लगा, काटे नहीं सांप, चुपचाप चले जाते थे, गुस्सा शांत हो जाता था, उनके पास आकर के चले जाते। शाम तक कार्यवाही चालू रहा, सांपों के द्वारा रिपोर्ट आया, वही नेगेटिव। ओह, और चिंता बढ़ गया, बोला इसमें नहीं होता है, वजन दे दो उनको, सांप नहीं काटते, विष दे दो सांप का, विष और भी विष ऐड करके, और चार पांच और हाई डोज देकर दे दो विष उसको, खिला सर खाने खाएगा उसको, बोलो और कुछ खाना मत दो, ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर में तीनों टाइम दो। उस रिपोर्ट के लिए आशा करके बैठा, तीन टाइम लिक्विड सलीड और चटनी में, सभी में, सर प्रकार में, हर प्रकार के विष दे करके दिए, और बड़े प्रेम से खाए, पूरे विष सारे खाए, हरि स्मरण में विष भी अमृत हो गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। शाम खिलखिल हंस रहे थे, रिपोर्ट आया और एकदम और बढ़ गया, इसमें भी नहीं हो पाया, गुस्सा होकर गाली दर फोन रख देता, और क्या करो, तो सेकंड नडर दिया, बोला लेके जाओ उनको पहाड़ के चोटी में ले जाओ, यहां से लेकर पटका दो उसको ऊपर से, वहीं पे छिन्न चित्र हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बेचारे इतने बड़े पहाड़ की चोटी को डरते डरते कहां से लेकर गए, अधिक लोग उठा कर इतने ऊंचाई से लेकर गए, वहां से लेकर के फेंके, तब भी कुछ नहीं हुआ, और परेशानी, कुछ नहीं उतारे, समुद्र में फेंक दो उसको, उठा कर लेकर महासागर में फेंक दो, उतार कर जा कहीं लाएगा, मगरमच्छ खा जाएंगे, डूब जाएगा, मर समुद्र में फेंक दिया गया, बहुत ऊपर से लेकर समुद्र में फेंक दिया गया। तब निडर है कि देखा हुआ अगर पहुंचे, उनके पहले हुआ अगर पहुंचा होता। वो बेचारे शाम तक बड़े परिश्रम करके आए, आग लेकर तो पहले से बैठा है। वो रिपोर्ट मिला, ये सब रिपोर्ट कई दिन तक, हर एक जो और कोई प्रयास था नहीं उसके पास, जो उनके प्रकार उपाय था, सारे उपाय करने के बाद जब असफल हुआ, और प्रत्येक रिपोर्ट के साथ उनका टेंशन और हार्ट बीट बढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, शुगर भी बढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। अब जब देखा कोई बाकी ने सब करने के बाद विफल हुआ, बेड में पूरा बेड रेस्ट हो गया, महाराज हिरण्यकशिप जी का बिल्कुल सिख हो गए, सयासाई हो गए, बहुत बद्दे आकर देखे कि बहुत भारी बीमारी हो गया, क्योंकि इतने टेंशन, वैद्य लोग कर पूछे महाराज क्या ना क्या करूं, मेरा बहुत चिंता है। क्या चिंता, ना ये मरता भी नहीं डरता भी नहीं, हमें इतनी परेशान करता भाग जाता, घर छोड़ के जाता भी नहीं, मेरे पास रहता कभी जाता नहीं, छोड़ करके यही हमारा साथ, वो देख ले प्रणाम भी करता है, और टेंशन बढ़ाता है, और मैं सारे उपाय कर डाला, ये मरता भी नहीं, तो पता नहीं वो तो मरेगा नहीं, वो तो बड़ा हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। अब आगे चलकर तो वो ही राजा बनेगा, मैं तो बूढ़ा, मुझे क्या करेगा वो, कैसा बदला लेगा, वही सोच सोच करके उनको इतने महाव्याधि हो चुका था कि पूरा एक एक बदला चुका गया, वो तो छोड़ेगा नहीं, अभी जवान होने वाला है, अब मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, बहुत इतने ब्लड प्रेशर हाई, इतने चिंता में पड़ गया था। तो डॉक्टर को बोले क्या दवाई करें, महाराज तो बहुत टेंशन में है। तो अंततः ऐसे बुरी स्थिति देख करके, इतने तबीयत खराब सुन करके, उनके डायरेक्टर साहब फिर आए मिलने के लिए उनको। संढान अमरक दोनों आए, आ करके उनको बहुत सहानुभूति देकर बोले, देखिए राजा जी, आपके एक आवाज से इंद्र चंद्र लोकपाल आदि थरथर थरथर कांपते हैं। ये छोटा सा बालक 5 साल का आपके बेटा, उनको उनके बारे में सोच करके अपने सज्जा सही हो गए, इतने बीमार हो गए, ना क्या करूं इसे इस बात है ना। देखिए बालक है, किस कारण से उनका ग्रह नक्षत्र ठीक ठाक है नहीं, कुछ काम नहीं करता, दबा मर नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बाल बुद्धि तो बाल बुद्धि है। अभी हमारे पापा जी आएंगे, पापा आने वाले हैं, वो गए थे ना टूर में, आने वाले हैं, आप तो जानते हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं, वो जो पढ़ाएंगे बुद्धि सुधार पड़ेगा, बदल जाएगा। आप ऐसा करते हैं, आप उसके बारे में सोचिए ना, हम ले जाते हैं हॉस्टल में उसको, हम हॉस्टल में ले जाते हैं, अब यहाँ बोर्डिंग में रखेंगे, अब बालकों के साथ रहेगा, सबके साथ वहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मन लग जाएगा उसमें, सुधर जाएगा, और पापा आएंगे उन फिर सुधार देंगे। वेरी नाइस, टेक इट, लेके जाओ उसको, पता नहीं उसमें कुछ नहीं होता, उसमें लेके जाओ उसको, तुम विदा कर दे वो, लेके जाओ, एडवांस फीस दे दूंगा, जो करूंगा, तो लेके जाओ उसको। तो लेके गए दोनों गुरु पुत्र, उसको लेकर गए, लेके आपने रखे पहले तो था, रख करके उनको खूब समझाया, बोले देखो तुम्हारा कितने उच्च कुल का खानदान है, दैत्य रूपी चंदन बने ऐसा तुम कंटक वृक्ष, ये दैत्य कुल से चंदन के उपवन है, दैत्य वंशा कितने हाई फैमिली पेरेंटेज है आपका, और उसमें आप ये भक्त बन गए, ये तो बबलू का पेड़ है, ये बबलू ना क्या बोलते हैं कांटे बबलू बबलू जी बैठे क्या नहीं मतलब ये कंटक वृक्ष जो कांटे वाला पेड़ होता ना। बोलिए आप ये कैसे बन गया, ये सारे तो आपके खानदान सारे चंदन के पेड़ है, सब बदमाश है, शराब खाने वाले हैं, सब वुमेन हंटर है, तुम ऐसे कांटे की पेड़ कैसे निकला भाई, इस परिवार में कोई एक भी नहीं उन खूब समझा, बोले देखो इज्जत के सवाल है, आपके खानदान के जो शत्रु है वो विष्णु है, विष्णु आपके परिवार के जन्मजात शत्रु है, और उस शत्रु तो आपको उखाड़ना चाहता है, आपके कंपटीटर है, और उस शत्रु जब कुठार है आप उसका बेंट बनता है, कुल्हाड़ी जानते ना जिसमें लकड़ी काटते हैं, जिसको कुल्हाड़ी बोलते ना, वो कुल्हाड़ी काटता है लकड़ी को, लेकिन कुल्हाड़ी में अगर बेंट ना हो तो कुछ काट सकता, तो ताकत किसमें है, बेंट ना हो तो कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर पाए। बोले विष्णु तो कुल्हाड़ी है लेकिन आप बेंट है उनके साथ, और इसी कुल का होकर के उसका बेंट बनकर उनके साथ देता है, अपने कुल को काटता है, ऐसा मत करो, ऐसे समझाओ। लेकिन प्रहलाद महाराज तो समझे हुए थे, वो क्या समझाएंगे उनको, तो चुप रहे, लेकिन बोले नहीं मूर्खों का बात कहा मैं सुनू, बात क्या कहूँ, कुछ बोए नहीं, चुपचाप रहे, चुप रहे, अपने हरिस्मरण में रहे। तो उन्होंने खूब समझा बुझा करके चुप देखे, प्रहलाद चुप हो गए, फिर उनको अपना पढ़ाने लगे, खूब समझाने लगे, वहीं रखाने लगे, कुछ दिन तक तो रहे, खूब से पढ़ाने लिखाने लगे उनको। एक दिन कुछ स्पेशल डे था, तो उन्होंने सारे बच्चों को कोई कॉमन स्पोर्ट्स डे था कि समथिंग था, ऐसा कुछ था, तो उन्होंने बोले देखो आप ये सब इस समय रिक्रिएशन पीरियड है, आप खेलकूद कर जाना, मैं नेक्स्ट फिर जाते दो पर लंच करने के लिए। दोनों टीचर चले गए अपने अपने क्वार्टर में, पास में घर था, क्वार्टर में चले गए, सारे बच्चे आ गए साथ में, क्योंकि राजकुमार इतने आकर्षक देखने के लिए सब उनको साथ में खेलना चाहते हैं। तो आकर बोले कुमार चलिए खेलेंगे, चलो ये चलिए जाए, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, सब आ गए, सारे बच्चे आकर के उनके साथ उनको बुलाने लगे साथ में लेकर खेलने के लिए। अब प्रहलाद महाराज देखे टीचर तो गए खाने पीने के लिए, सारे बच्चे साथ में आ गए, आप उनको खेलने के लिए जाने के लिए रोके, बोले पागल है, खेल कूद में टाइम खराब करेंगे ना, कुमार खेलेंगे नहीं, ये खेलने का तो टाइम है ना। नहीं आप नहीं जानते, खेलने का टाइम नहीं। अच्छा क्या करें, तो उनको बहुत सम्मान करते थे, माने उनके बात को, प्रहलाद महाराज इतने गंभीर थे तो सारे उनके क्लासमेट, पूरे इंस्टीट्यूशन में जितने क्लासमेट, सारे छात्र दूसरे दूसरे क्लास में आ गए, उनके पास आकर बैठे, सबको बैठा करके चारों तरफ उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, उनको शिक्षा देना शुरू किया, और ऐसे अद्भुत शिक्षा दिए, अद्भुत उनका नम्रता था उनके था, तो सारे बालक उन्हीं के उम्र के थे, लेकिन कोई खेलने के समय में खेल नहीं गए, चुपचाप बैठ गए और सुनने लगे ध्यान से। क्यों? नारद जी कहते क्योंकि एक तो बालक थे, अभी कंटामिनेट नहीं हुआ था, अभी उनका हृदय कल्मषग्रस्त नहीं हुआ था, पॉलिटिक्स आदि विषय को वैसे ज्यादा जानते नहीं थे बेचारे, बहुत सरल थे, निष्कपट हृदय वाले बालक थे, और ये जो निष्कपट वाणी उनको जो कुमार ने सिखाने लगे, सब सीरियसली सुनने लगे, उनको बड़ी अच्छा से बताने लगे, सब बैठकर सुनने लगे, इतने सुंदर उनको सिखाने लगे, बैठने लगे, सारे बैठ करके चुपचाप साइलेंट श्रवण करने लगे, श्रवण करा करके पूरा क्लास टाइम उनको सुनाए, क्लास लिए ले ले करके उनको यहां तक समझा दिए कि जीवन की लक्ष्य है भगवान की सेवा, और सेवा के शुरुआत प्रैक्टिस होता है नाम कीर्तन से, तो इसलिए सब मिलकर के मेरे पीछे नाम कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जैसे कीर्तन कराने लगे, तब वो टीचर लोग खा करके सोए थे, दोपहर का सुना, वो साउंड सुना है, बड़ा डिस्टर्ब होने लगे, उनको खिड़की खोल कर देखने लगे, बोले अरे कोई प्लेग्राउंड में तो कोई नहीं है, खाली पड़ा, बच्चे गए कहाँ? देखे बच्चे तो सब बैठे हैं एक जगह पर, शांत तो बैठे हैं, वही बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, पहली बार नाम सुने उन्होंने, पहले तो कोई कीर्तन हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूशन के अंदर जहां इतने हाई टाइड था कोई ना जा सके, अब इंस्टीट्यूशन के अंदर वहां कीर्तन हो रहा है, सारे स्टूडेंट कर रहे, एक नहीं कि हॉस्टल में जाकर एक दुकान इसको नहीं, पूरे सारे बोले कीर्तन कर रहे, वो तो घूम कर देखे, बोली ये क्या चल रहा है सब, दौड़ी दौड़ कर भागे, बोली तो ये क्या हो गए, तो गड़बड़े, तो विष्णु का नाम कीर्तन कर रहे, कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे, आए आ करके और जो अब क्या देखे, पूरे ए टू जेड पूरे कलेश ही खराब हो चुके, सारे बच्चे कोई खाता पत्र सब हम छोड़ छाड़ कर सब कीर्तन बोले, बोले हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बोले अरे तुम्हारे एग्जाम ही पढ़ो, फोड़ो एग्जाम जम देंगे नहीं हम, लो क्या करेंगे, तुरंत फोन डायरेक्ट किए, बोले देखिए हिरण के शिव राजा जी, अभी एक लड़का खराब था, हमको पता नहीं था, गलती मुझसे भी माफ करें, अब पूरा वो कलेजी बिगाड़ दिया, वो तो अब कोई एक ही नहीं बचा, सारे कीर्तन कर रहे हैं, बोलते हमने एग्जाम देके पढ़ेंगे नहीं लो, अब हम तो जाए लाए थे उनको सुधारने के लिए, हम क्या सुधारेंगे, वो इसे बिगाड़ा एक ने आ करके, सारे बच्चे अभी उनकी तरफ हो गए, इतने प्रभावित होगा। तब युधिष्ठिर महाराज सुन करके पूछने लगे, अच्छा 5 साल की उम्र में कुमार प्रहलाद बालक अवस्था में सारे स्कूल को, सारे स्टूडेंट को ऐसे प्रभावित किए, होलसेल भक्त बना दिए थोक में, बोले हाँ, क्या क्या पढ़ाए, क्या लेसन दिए उन्होंने, क्या उनको पढ़ा है, आप जानने के बोले क्या था उनके लेक्चर, थोड़ा बताओ, तो ऐसे चेंज हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज सुनना चाहे, नारद जी कुछ लोग बाकी बाद में कहेंगे, बोले ये बताओ क्या क्लास था उनका, उनके मुझे बताओ, जो उसको बताने वाले थे, तब एक अध्याय पूरा छठा अध्याय जो है, छठा अध्याय में प्रहलाद जी की शिक्षा के वर्णन है, शुरुआत से प्रहलाद महाराज अपने साथियों को, क्लासमेट को क्या सिखाए, व्हाट लेसन, उसको पूरे अध्याय में विस्तृत वर्णन करते हैं, उस वर्णन को आज तो समय हो चुका है, आज समय हो चुका है, उस वर्णन को कल चर्चा करेंगे। ये एक्चुअली आज के कोटा में था लेकिन समय का अभाव है, तो कल उसको वर्णन करेंगे क्या उनको सिखाए वो बालकों को ताकि वो सब चेंज हो गए, वो शिक्षा कल करेंगे। वो समय कल देखेंगे, थोड़ा और जल्दी करेंगे, हम तो जल्दी तो चाहते हैं करने के लिए, लेकिन शिक्षा शिक्षा के बाद यही होगा, शिक्षा बताने के बाद में उन्होंने हिरण्य कश्यप को बताए, वो गुस्सा होगा, उनको बुलाएगा, फिर एक्शन आदि शुरू होगा आचार्य की तरफ से, हिरण्य कश्यप मरेंगे। कल एक दिन है ना, दो दिन हो गए, कल मरवाना चाहते ना हमने क्योंकि उपदेश भी कराना, स्तुति कराना चाहते ना, जब आप 9-10 कराना चाहते हैं बोलते हैं, 9-10 तो भाई तो जब मारने वाला मर्डरर होंगे तो उनको तो स्तुति करेगा ना, मर्डरर के मर्डर होने के बाद तो मर्डरर माना जाएगा, तो हत्याकारी भी तो होंगे किसी। नरसिंह भगवान के स्तुति अब बोलते हैं कि परसों सुनेंगे, तो मर्डर तो कल होना पड़ेगा है ना, तो कल मार कर रखेंगे। शिक्षा शिक्षा के साथ मारने की तैयारी करेंगे। हरे कृष्ण। श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्त राज प्रहलाद महाराज की, समेत भक्त वृंद की, हरे कुमार।